हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने। नमस्ते शाश्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाशादेशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वंदे अनंताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् साद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत् तत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बोलिए दो चार लोग। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनामानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बोलो मायापुरवासी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, मनसा मन से, इंद्रियैर्वा अथवा इंद्रियों से, बुद्ध्या बुद्धि से, आत्मना अहंकार से, वा अथवा अनुसृत स्वभावात् अनेक जन्मों के आदत से, करोति करे, जत जत जो जो, सकलम वह सब कुछ, परस्मै परम पुरुष नारायणाय भगवान नारायण के लिए है, समर्पयेत समर्पण कर दे, तत उन्हें। तो आज हम लोग भागवत धर्म को स्पष्ट रूप में समझेंगे। अभी तक दो दिन में केवल भूमिका समझे। सैद्धांतिक रूप में कल आप सुन रहे थे कवि जी प्रवचन कर रहे हैं कि मन्ने कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पाषण मात्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर असदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। कि इस प्रकार हम ऐसा मानते हैं कि संसार में भगवान अच्युत श्री कृष्ण के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है, सर्वथा भय शून्य है, क्योंकि उनके चरणों में शरणागत होने पर असत पदार्थों के प्रति अहंता ममता समाप्त हो जाती है और इस अहंता ममता के कारण ही चित्त उद्विग्न रहता है। यह करना है, यह बाकी है, यह हमारा है, पराया है, इससे मन उद्विग्न रहता है। केदारनाथ में प्रलय हुआ कोई बात नहीं, वो एक मनोरंजन का साधन था टीवी में देखने पर, क्योंकि उसमें हमारे लोग नहीं बहे, लेकिन जिनका परिवार उजड़ा जिनके लोग बहे उनके लिए हाय हाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज न्यूज पेपर में, टीवी में, अखबार में ट्रेन दुर्घटना, कार दुर्घटना, कुछ आतंकवादी मार दिए, ये हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं, अपने लोग नहीं थे उसमें। जब अपने लोग होते हैं तब दिक्कत होता है। उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात्, असत पदार्थ को जब अपना मानते हैं उसके कारण बुद्धि उद्विग्न होती है, अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाय हाय ये क्यों हो गया। तो इस कारण से ऐसे उद्विग्न चित्त प्राणियों का भय भी इस उपासना के अनुष्ठान से समाप्त हो जाता है। भगवान अच्युत श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना, और वह उपासना किस रूप में है, अगर प्रश्न हो क्या उपासना किया जाए, कहते हैं जे वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्म लब्धे अंजह पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। कहते हैं अपने प्राप्ति का उपाय श्री भगवान जो बताए हैं शास्त्रों में, वह सरल साधन भागवत धर्म है। अपनी प्राप्ति का उपाय भगवान स्वयं अपने मुख से बताए हैं, बड़ी आसानी से उसको भागवत धर्म कहते हैं। अंजह पुंसाम, जीव उसको आसानी से पूरा कर सकता है, और बहुत पढ़ाई लिखाई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अविदुषाम, अविदुषाम का अर्थ है विद्वान नहीं, मूर्ख भी जिस साधन को करके भगवान को प्राप्त कर ले उसको कहते हैं भागवत धर्म। बहुत आसानी से जिसका आचरण किया जा सकता है वो है भागवत धर्म। इसका अर्थ नहीं कि केवल मूर्खों का विषय है, बुद्धिमान से बुद्धिमान विद्वान जो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करता है वही बुद्धिमान है। सब बुद्धिमान सुमेधा और जजंती ही सुमेध स कौमार आचरित प्राज्ञ, सब बुद्धिमान इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। वह बुद्धिमान है, वह सुमेधा है, सुंदर मेधा वाला है, वह प्राज्ञ है, प्रकृष्ट बुद्धि वाला है। तो अविदुषा मतलब विद्वान मूर्ख कोई भी जिस भागवत धर्म का आचरण करके आसानी से भगवान को प्राप्त कर ले उसको भागवत धर्म कहते हैं। और यह भागवत धर्म स्वीकार मात्र कर लेने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। अपने जीवन में स्वीकार कर ले, सीरियसली अगर भजन करे तब तो क्या कहना है, अगर किसी भी तरह से करता है तो वह नरक से बच जाता है और दिनानुदिन भगवत धाम भगवत प्रेम की ओर अग्रसर होता जाता है। तो अब इसका प्रैक्टिकल रूप क्या है, व्यवहारिक रूप, सैद्धांतिक बातें तो हो गई, तब कहते हैं इसका व्यवहारिक रूप। कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यज्जत् सकलं परस्मयी नारायणायेति समर्पयेतत्। कहते हैं वह कुछ भी करता है, जो काम करता है वो शरीर से करे, वाणी से करे, मन से करे, अपने अन्य इंद्रियों से करे, आंख नाक कान आदि से, अथवा बुद्धि से करे या अहंकार से करे। व्यक्ति को कार्य करने के लिए उसका अहंकार प्रेरित करता है। जब मन में यह अहंकार होता है मैं टीचर हूं, तब घड़ी देकर स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए। जब अहंकार है कि मैं स्टूडेंट हूं तो अपना होमवर्क पूरा करता है, मुझे जाना है पढ़ना है। जब अहंकार है कि मैं भक्त हूं तो 3:30 बजे जग कर नहा कर मंगला आरती में आता है। अहंकार ही उसको प्रेरित करता है कर्म करने के लिए। जब अहंकार होता है कि मैं भारतीय हूं तो 6-6 घंटा क्रिकेट मैच देखता है, हमारा इंडिया जीतना चाहिए। अरे आज तो बड़ा बुरा हो गया, समय बर्बाद हो गया, हार गए। तो ये है अहंकार, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, जो भी है सब अहंकार है। तो अहंकार व्यक्ति को कार्य के लिए प्रेरित करता है। तो अहंकार और वह अनुसृत स्वभाव, कुछ ऐसे स्वभाव हैं जो इस जीवन में पता ही नहीं चलता है मैंने कब सीखा, जन्म जन्मांतर का स्वभाव रहता है और वो बड़ा दुरू होता है, छूटता ही नहीं है। कोशिश भी करता है कि नहीं करना चाहिए छोड़ दें, लेकिन उसका डिप्रेशन हो जाता है, अरे तो अच्छा नहीं है, कुछ गलत स्वभाव कुछ अच्छा स्वभाव व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। तो इन सब कारणों से, इन सब कारकों से वो जो कुछ भी करता है वो सब कुछ भगवान नारायण को समर्पित करता चले, बस यही भागवत धर्म है, बस और कुछ विशेष नहीं इस पर सोचना है, यही है भागवत धर्म। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, ननु केते भागवता धर्मा, भागवत धर्म क्या है? उत्तर, ईश्वर अर्पितानि सर्व कर्माणि अपित्याह कायेन इति, ईश्वर को समर्पित करके सारा काम करता चले, बस यही भागवत धर्म है। जत करोषि जदस्न्यासि, जत जुहोषि ददासि जत, जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, यह भागवत धर्म। भगवान को समर्पित करे, जो कुछ भी करे वो भगवान के लिए करे। सभी लोग खाते हैं, सभी लोग सोते हैं, सभी लोग जगते हैं, सब लोग नहाते धोते हैं, लेकिन उनके कार्य में अंतर हो जाता है। जगने के लिए लोग तो जगते हैं सोने के बाद, लेकिन जब 3:30 बजे जग कर सब लोग जग कर ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जब 3:30 बजे जगा जाता है और जग कर स्नान किया जाता है, तिलक किया जाता है, कपड़ा पहनकर मंदिर में जाया जाता है, तो स्नान करना, ब्रश करना, शौचादि क्रिया भी वो मंगलारती है, वह भी। और जब 8-9 बजे जग कर जल्दी जल्दी नहा कर ऑफिस और दुकान जाया जाता है, तब वह कर्म होता है और वह कर्म बंधन में डालता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। कभी कभी अच्छा कर्म हो जाता है तो वह भी बंधन में जाता है, चाहे सोने का सीकड़ हो चाहे प्लास्टिक का रस्सी हो, अगर बांध दिया जाए तो दोनों एक ही जैसा बंधन में है। खूब महंगा सोने के सीकड़ में बांध कर छोड़ दिया जाए और खुश रहो कि हम बड़ा कीमती रस्सी में बंधे हैं, 10 दिन खाना पीना भोजन न मिले, तो सोने के रस्सी से बंधा है इसलिए खुश होगा। चाहे वो स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, दोनों बंधन है, दोनों सुख दुख है प्राकृत जगत का। तो इस प्रकार कर्म बंधन मिलता है, अच्छा बुरा कर्म जो भी है वो बंधनकारी है। लेकिन भगवान की भक्ति ये प्राकृत नहीं है, निर्गुणा है, इस प्रकृति से पार अप्राकृत स्पिरिचुअल जगत का चीज है। भगवत प्रेम देता है, क्लेश नहीं देता। यहाँ का कोई भी सुख दुख में बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जिसको सुख समझ कर रहे हैं वो सुख है, भ्रम बस सुख समझ रहे हैं। अगर ज्यादा देखने लगेंगे कम समय में, लोग बच्चे टीवी देखते हैं तो आंख खराब हो जाती है कम उम्र में। ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थ मिल गया खा गए तो पचेगा नहीं, बदहजमी हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसा भी घटना, ऐसी भी घटनाएं हुई है कि ज्यादा खा लेने से ऑपरेशन करके निकालना पड़ा है। दूसरों की बात तो छोड़िए, एक भक्त सूजी का हलवा खूब गाय के घी में बना हुआ, ड्राई फ्रूट डाला हुआ, उसको मिला पहले पहल लगता है, खा लिया ज्यादा। चंडीगढ़ में 88 की घटना है, 88 की। तो बार बार मोर मोर करके मांगता था, विदेशी भक्त था। तो एक भक्त कहा, प्रभु जी इतना चिंता मत कीजिए, बहुत है, आप रूम में ले जाइए पॉकेट में। तो दे दिया वो 2-3 किलो उसको खाने के बाद, और रियली नाइस, खूब प्रशंसा करते हुए खा रहा था। ले गया रूम में और थोड़ा थोड़ा करके खाते रहा। वो 11-12 बजे तक इतना खा लिया कि उसको सांस लेना मुश्किल हो गया। तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और बाद में उस समय कृष्ण कांति प्रभु प्रेसिडेंट थे, 12-1 बजे रात में उसको ले इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर कहा कि दवा देकर इसको उल्टी कराना पड़ेगा, लेकिन दवा खाने का भी जगह नहीं था, यहाँ तक हलवा था, थोड़ा सा पानी पीने का जगह नहीं था, सब छू छा कर पेट और दबा कर देख लिए, कोई गुंजाइश नहीं रहा, तो कहे कि अब जल्दी कीजिए, निर्णय लीजिए, अब ऑपरेशन करके हलवा निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेशन एक बार मैं कह रहा था इसको कहीं ऐसे ही कथा में, तो वहीं बैठे थे वही आज सन्यासी हैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज, तो कहे कि अच्छा आप एक बार के ही जानते हैं, दो बार ऑपरेशन करना पड़ा है, एक बार तो हलवा निकालने के लिए खाना पड़ा, एक बार कोई किसी फीस्ट में ज्यादा खा लिया था तो ऑपरेशन करना पड़ा, दो बार उसका पेट चीरना पड़ा है, नहीं पचा पा रहा था। तो कोई भी भोग, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जिसको तुम सुख समझ रहे हो ना वो दुख है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख जो नए एवते आद्यंतवंत कौनते न ते सुरमते बुधा। भगवान बहुत बुद्धिमान है, बोलने का इनका स्टाइल है, कहते हैं यही संस्पर्श जा भोगा, एक भोग का नाम रखते हैं भोगा कहकर बहुवचन में, संस्पर्श जा जो आलिंगन चुंबन आदि से स्पर्श भोग प्राप्त होता है, यही संस्पर्श जा भोगा, देखना सुनना खाना पीना मन सभी उसको संस्पर्शक भोग, स्त्री सुख को पहले लाइन में रखकर कहते हैं जितने भोग हैं दुख जो न एवते, ये दुख देने वाले हैं, एक दूसरा आद्यंतवंत, ये प्रारंभ तो होता है सुख के रूप में लेकिन अंत हो जाता है, परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि एक दिन खूब स्वादिष्ट खा लिए तो अब जीवन भर खाना ही नहीं है, बार बार भूख लगेगा तो अंत हो गया ना, इतना स्वादिष्ट 56 भोग खाया फिर भूख लग गया, खाया पिया सब बेकार हो गया ना, वो कुछ काम देता 6 महीना साल भर तो चलो एक दिन खा लिया, या जिंदगी भर के लिए एक बार खा लिया टेंशन खत्म, ऐसा नहीं होता है ना, फिर बदल जाता है अंत, आद्यंत आदि है उसके साथ अंत, आद्यंतवंत कौनतेय हे कौनतेय, वो भोग अंत हो जाता है, पुनः पुनः चर्वित चर्वाणानम, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बार बार एक ही विषय को चबाए हुए को चबा रहे हैं, तो आद्यंतवंत है अंत होता है और दुख जो नए होते ये दुख में बदलता है, दो भोग के रिजल्ट बतलाते हैं, इससे दुख मिलता है, तो अब जब दुख देता है और अंत होता है तो फिर क्या करना चाहिए, आद्यंतवंत कौन थे या? न तेसु, इसमें न तेसु रमते बुधा, इसमें बुद्धिमान लोग नहीं रमते, मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो इसमें रमते हैं वो मूर्ख हैं, बुद्धिमान लोग नहीं रमते, तो सारा दुनिया रम रहा है तो डल है मूर्ख है स्पष्ट है, न तेसु रमते बुधा, विद्वान व्यक्ति इसमें नहीं रमता, संसार के किसी भोग को आहा आनंद आ गया मजा आ गया, कार्तिक में जाड़े में परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी के, और परिक्रमा करते हुए चाय के दुकान पर थोड़ा चाय पी लेते हैं गरम, तो मजा आ गया, क्या मजा आ गया, कोई कोई बीड़ी पीकर मजा आ गया, अपने अपने अनुसार भोग भोगते हैं उनको मजा आ जाता है थोड़े देर के लिए, तो ये जो मजा आ जाता है वही है रमना, और बुद्धिमान लोग जानते हैं कि इसमें मजा नहीं है, इसमें तो केवल दुख है, केवल दुख, आद्यंतवंत कौनते न तेसु रमते बुधा। तो भगवान गीता में भगवान बहुत सबसे बड़े वक्ता हैं, एकदम अशिष्ट सीधे गाली नहीं देते हैं, लेकिन कह यही रहे हैं कि बुद्धिमान लोग नहीं रमते मतलब रमने वाले मूर्ख हैं, स्पष्ट है, फिर कहते हैं अशोचान व शोचस्तो प्रगावादन भाष से गता सूचन न सोचंती, अंतिम क्या है नानू सोचंती पंडिता, हाँ ये मैं केवल यह कहना चाहता हूँ, नानू सोचंती पंडिता, इसको पंडित लोग नहीं सोचते। जो लोग ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको निश्चित रूप से मरना है, जो मर रहा है, जो नहीं मरा, जो नहीं मरने वाला है वो तो नहीं मरेगा, आप देह आत्मा का अंतर स्पष्ट बताएंगे, तो पंडित लोग नहीं इस पर सोच करते। मतलब बोल रहे हो बड़े बुद्धिमान की तरह, लेकिन हो एक नंबर के अव्वल मूर्ख। जो तुम तर्क दे रहे हो कि अपने स्वजन लोग हैं मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, और बुद्धिमान लोग इन सब विषयों को समझते हैं, इसलिए टेंशन में नहीं होते। और जो सोचते हैं वो पंडित नहीं है, नानु सोचन्ति पंडिता, जो सोचते हैं वो मूर्ख हैं। मतलब तो हो अव्वल नंबर के मूर्ख, भले विद्वान की तरह बहस बांध रहे हैं, नानु सोचन्ति पंडिता। तो इस प्रकार भगवान का कहना है कि इस संसार के दुखों में लोग नहीं रमते जो बुद्धिमान लोग हैं। तो यहाँ जो कुछ भी किया जाता है शरीर से, इंद्रियों से, वह सब भगवान के लिए करना चाहिए। जो अपने लिए किया जाता है उसको काम कहते हैं। निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अंतर हो जाता है, जब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो उसको प्रेम कहते हैं, जब अपने इंद्रिय के सुख के लिए किया जाता है उसको काम कहते हैं। तो काम बंधनकारी है और प्रेम आनंददायी है। तो इस प्रकार जो कुछ भी करते हो वह कृष्ण के लिए, नारायण के लिए समर्पित करके करो। कायेन शरीर से, कायेन शरीर के द्वारा, मतलब जो शरीर मिला है उसी से, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, स्वस्थ है, रोगी है, जैसा भी है, उसी शरीर से भगवान का भजन करना है। अब ऐसा नहीं सोचना वो फर्स्ट क्लास शरीर रहेगा तब भजन करेंगे, मैं तो अस्वस्थ हूँ। अगर आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं तो बस हो गया। भजन के लिए केवल यही चाहिए, इंद्रियां ठीक रहना चाहिए बस। तो किसी भी शरीर से भजन किया जा सकता है, चाहे वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, कोई हो, किसी शरीर से, स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, काये न माने, जो शरीर मिला है उसी शरीर से भजन करें। यहाँ तक कि केवल मनुष्य का शरीर है, पशु का शरीर है, पक्षी का शरीर, जो शरीर मिला है उसी से भजन किया जा सकता है। पक्षी के शरीर में भी भजन किए हैं, बंदर के शरीर में भी भजन किए हैं, और मनुष्य का शरीर मिला है तो क्या कहना है। वाचा बाणी, जो बाणी मिली है उस बाणी को, उसी भाषा को भगवान में लगाना चाहिए, जैसी बोलने की क्षमता है। वाचा का अर्थ जो भाषा आप जानते हैं, उड़िया जानते हैं, बंगला जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिस भाषा में बोलते हैं उसको सबको भगवान समझते हैं उसी भाषा में। जैसा आपको स्वर प्राप्त है उसी स्वर को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि लता मंगेशकर का स्वर चाहिए तब कीर्तन करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। जिस स्वर को आप बोल सकते हैं, जिस स्वर में गा सकते हैं, उसी में गाइए वाचा। तो इसी संदर्भ में मैं उदाहरण दिया था या देता हूं भीमसेन के संगीत सीखने की। तो वहां बरसाना में एक बाबा हैं, रमेश बाबा, उनके द्वारा मैं सुना हूँ। आप यह मत पूछ दीजिएगा कि महाभारत के किस खंड में कहाँ है, मैं उनके द्वारा सुना ये महाभारत की घटना है कि एक बार भीमसेन को शौक लगी संगीत सीखने का। क्यों? क्योंकि अर्जुन की वाहवाही जब सांस्कृतिक गोष्ठी होती तो वहाँ होता, मृदंग भी अच्छा बजाते थे अर्जुन और गाते भी बहुत अच्छा थे, और युद्ध के मैदान में गांडीवधारी अजय विजेता अर्जुन की वाहवाही तो होती ही थी, उनका कोई सामना ही नहीं कर पाता। इस संसार की बात छोड़िए, पृथ्वी की, देवता लोग भी उनका सामना नहीं कर पाए। देवराज इंद्र को भी एक बार अरेस्ट कर लिए, भगवान शिव को एक बार किरात वेश में आए तो उनको अरेस्ट कर लिए अर्जुन। तो सब जगह वाहवाही, युद्ध स्थल में वाहवाही, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वाहवाही। भगवान कहते वाह अर्जुन कमाल कर दिया, गंधर्वों को फेल कर दिया, इतना सुंदर गाता है। तो भीमसेन के मन में आया यार मुझे भी सीखना चाहिए। देखा देखी मन में शौक आ ही जाता है तो मुझे भी संगीत का अभ्यास करना चाहिए। तो कुछ कलाकारों को बुलाकर हारमोनियम तबला सब चालू किए सीखना। तो हसनापुर के राजभवन के रिसेप्शन में अभ्यास प्रारंभ कर दिए, जहां लोग आया जाया करते थे वहीं पर चालू किए। अब सीख रहे थे लेकिन डिस्टर्ब तो सबको होता था, लेकिन भीमसेन को मना कौन करे। महाराज युधिष्ठिर ऐसे ही शीली स्वभाव के, कुछ बोल नहीं सकते। अर्जुन बोलेगा तो एकदम खैर नहीं है, तुम काबिल बन रहे हो, सीख गए हो। तो अब अर्जुन को तो बोलने का कोई मतलब नहीं है, नकुल सहदेव का हिम्मत नहीं, बोलने से मना कौन करे उनको। वो अभ्यास चलता था, हारमोनियम कभी कभी तबला कभी गाना चल रहा था। तो महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी से धीरे से कहे कि इसको समझाओ ना, कहीं किनारे अभ्यास करे। तो द्रौपदी कही कि साधना और संगीत एकांतिक चीज है, एकांत में सीखना चाहिए, जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं। यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपका मन इधर उधर बटता है तो ये ठीक नहीं है। कोई एकांत जगह में, मतलब कहाँ, तो जो पहाड़ पर्वत के नीचे एकदम एकांत स्थान है, वहाँ कोई नहीं जाएगा पहाड़ी के निकट, और वहाँ आप संगीत सीखेंगे, दिन भर तबला बजाएंगे तो क्या मतलब है। कोई अपने आनंद में आप मन भी एकाग्र रहेगा। तो भीमसेन पहलवान थे, बलवान थे जरूर, लेकिन उतना सूक्ष्म बुद्धि नहीं पकड़ नहीं पाए। कहे ठीक है, तो अब द्रौपदी की बात मानकर कलाकारों को एक पहाड़ी के नीचे अभ्यास करने में अपना लगे थे, आते थे वहीं सिखाते थे। एक दिन की घटना है, एक धोबी का गधा भूल गया था, 3 दिन से भूला था वो बेचारा पहाड़ी पर, यहाँ वहाँ खोज रहा था। तो जब पहाड़ी के ऊपर खोज रहा था तो नीचे बड़ा जोर से आवाज सुनाई दिया, तो उतरा। तो उतर कर आया तो वहां और कोई नहीं, भीमसेन अकेले अभ्यास कर रहे थे, गा रहे थे। तो भीमसेन उसको देखे तो पूछे तू कैसे यहां आ गया। तो कहा कि सरकार आने के कारण बताने में भय लग रहा। तो कहे कि भय की कोई जरूरत नहीं, तू बोलो बोलो कैसे आ गया। तो कहे कि सरकार हमारा गधा भूल गया है, 3 दिन से मैं ऊपर ढूंढ रहा था तो इतना जोर इधर आवाज हुआ, मैं सोचा वही बोल रहा है इसलिए मैं उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया, और यहाँ आया तो वो नहीं। तो आप तो भीमसेन डांट, मेरा आवाज गधे जैसा लग रहा था, डांटे डांट कर तो उसको भगा दिए। लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि ओहो इसीलिए रिसेप्शन से हटाया गया। अब पता चला, मतलब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था मेरे आवाज। ओहो इसका मतलब कि मैं सीख कर भी क्या करूंगा जब आवाज गधा जैसा है। तो भीमसेन का उत्साह भंग हो गया, सीखना बंद कर दिए। या फिर किसी को अच्छा लगे कोकिल स्वर हो तो अच्छा लगे, लोग सुनना चाहें तब ना, अब छोड़ दिया उत्साह। एक घटना ये है। दूसरी घटना कि एक बार महाराज युधिष्ठिर सुबह सुबह ही, अभी सूर्योदय हो रहा था तब तक, भीमसेन को बुलाए और कहे कि भीमसेन द्वारिका चले जाओ और श्री कृष्ण को बुला कर लाओ, सूर्यास्त के पहले ला देना, देर नहीं करना, निकल जाओ अभी। वह ठीक है भैया। तो अभी भीमसेन तो स्नान भी नहीं किए थे, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते तो आराम से जाते नहा धोकर। तो नहाने खाने के चक्कर में भूल गए कहीं जाना भी है, पूरा दिन बीत गया। थोड़ा सूर्यास्त होने का टाइम आया तो भीमसेन अपनी मस्ती में टहल रहे थे, उनको याद भी नहीं था कि महाराज युधिष्ठिर मुझको ऐसा कहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ी भीमसेन पर, बुलाए, कहे आ गए श्री कृष्ण। अरे भैया मैं तो भूल गया, मुझे याद ही नहीं आया। तो महाराज युधिष्ठिर नाराज, कहे तुम इतना लापरवाह हो, अगर यह काम किसी दूसरे को दिया गया होता तो निश्चित गया होता, अर्जुन नकुल सहदेव या किसी मंत्री को भी भेजा गया होता। मैं तो सोचा तू जिम्मेवार व्यक्ति है, तू ऐसा गलती किया, मैं कितने आवश्यकता से तुमको कहा था। महाराज युधिष्ठिर दुखी होकर सिर पकड़ लिए, ये इतना लापरवाह। अब तो भीमसेन को इतना बुरा लगा कि एक रूम में जाकर किवाड़ बंद करके रोने लगे, और रोते रोते कहने लगे, हे श्री कृष्ण, क्या केवल तुम द्रौपदी की ही आवाज सुनते हो, मेरा नहीं सुन सकते हो? वो जब बुलाती है चीर बढ़ाने आ जाते हो, कभी दुर्वासा के संकट से रक्षा करने वन में आ जाते हो। भैया मेरा भी सुन लो ना, आज आ जाओ, महाराज बड़ा दुखी है, मैं क्या कहूं, मैं कैसे करूं, बहुत रो रहे थे एकदम रूम बंद करके। तब तक कोई दरवाजा नॉक किया, हेलो ये कौन आ गया? तो भीमसेन आंसुओं से पोंछ कर खोले तो एक सेवक था नौकर, महाराज बुला रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर बुला रहे हैं। तो कहे अब क्या करेंगे, अब तो गलती हो ही गया है। तो आंसुओं से पोंछ करके गए तो देखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के बगल में कृष्ण बैठे हैं, और दूसरा केस लद गया भीमसेन पर। महाराज युधिष्ठिर पूछे कि भीमसेन तुम मुझसे भी झूठ बोलता है, तो मुझसे झूठ बोलता है? तो भीमसेन कहे नहीं भैया, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। पूछो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इनसे पूछो। कह रहे हैं कि भीमसेन मुझको बुलाया। तो कहे हाँ मैं यही कह रहा हूं। तो भैया मैं तो द्वारिका नहीं गया। तो भगवान कहे मैं कब कह रहा हूं कि तू द्वारिका गया, मैं द्वारिका जाने की चर्चा नहीं किया, मैं केवल यही कह रहा हूं कि भीमसेन मुझको बुलाया। तो भीमसेन तो हक्का बक्का सुन रहे थे क्या बोल रहे हैं। तो कहे भैया भीमसेन, प्रणाम करते हुए, कि जिस स्वर संगीत का अभ्यास जाकर कर रहा था वन में, कि मैं कुछ गाना जान जाऊं तो श्री कृष्ण वाहवाही करेंगे, वैसे स्वर की मुझे अपेक्षा नहीं है, मुझे तो वैसा ही स्वर चाहिए जब ही जो आप रूम बंद करके बोल रहे थे, जो रोते हुए, मुझे इस स्वर की अपेक्षा, जिस स्वर में आप पुकार रहे थे भैया आज आ जाओ, आप आ जाओ, केवल द्रौपदी की पुकार सुनते हो, यह जो रो रो कर आप कह रहे हैं, इसी स्वर की मुझे अपेक्षा है, बस बहुत राग अलापने की अपेक्षा नहीं है भीमसेन। तो इस प्रकार भगवान भीम के स्वर को भी स्वीकार कर लिए ना। तो वह अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि लता मंगेशकर के स्वर में गाएं, गाना है हृदय से कृष्ण को पुकारना है। तो वाचा जो बाणी मिली है उसी बाणी से कृष्ण का कीर्तन करना है। यद्यपि संकोच होता है भीमसेन की तरह कि मुझे गाना नहीं आता, उसी केस में मैं भी हूं, लेकिन गाना चाहिए, सिद्धांत यह है, बोलना चाहिए जो बाणी मिली है, जो क्षमता मिला है। तो कायेन वाचा मनसा, मन से भगवान के विषय में सोचना चाहिए, कभी कभी कातर भाव से प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण कब ऐसा दिन आएगा जब मैं आपके चरणों को देखूंगा, इन नेत्रों से आपके सीधा आवाज सुनूंगा, आपसे बात करूंगा, वो दिन कब आएगा जब मैं अपने इन नेत्रों से आपके चरण कमल को निहारूंगा, या भगवान के लीला कथा को स्मरण करना, उनके द्वारा भक्तों के किए हुए उपकार, भक्त वात्सल्य आदि गुणों को स्मरण करना, ये है मनसा, मन से भगवान के विषय में सोचना, प्लानिंग करना, योजना करना। सभी कुछ न कुछ तो सोचते हैं, कुछ तो कुछ प्लानिंग करते हैं, कभी कभी खाते समय, सोते समय, जगते समय, स्नान करते समय भी मन से सोचते हैं, और जप करते समय तो और ज्यादा सोचते हैं क्या करना है। भक्तों को कहा जाता है कि भाई जप करते समय मोबाइल स्विच ऑफ करके जप करना चाहिए, उस समय फोन बात वत नहीं करना चाहिए। एक बार महाराज कह रहे थे तो एक भक्त कहा कि महाराज जी उसी समय तो ज्यादा याद आता है क्या करना है, किसको फोन करना है। एक भक्त मुझसे भी कह रहे थे कि क्या कहें प्रभु जी, जब जॉब करने बैठते हैं तभी तो याद आता है कि उसको फोन करना है, वहां जाना है, ये करना है, इसलिए रखना पड़ता है। जब याद आता है तो फोन करो, फिर तो दिन भर भूल जाते हैं। तो मैं कहा कि जब ऐसी बात है तो कागज कलम लेकर बैठिए जॉब करते समय, और फोन तो बंद कर दीजिए, और जब याद आवे तो लिख लीजिए इसको फोन करना है, और जॉब पूरा करने के बाद फिर फोन कर लीजिएगा। तो कहे हाँ ये भी एक तरीका है। तो महाराज श्री बतलाते हैं कि जप करते समय भगवान के नाम उच्चारण कर रहे हैं, नियमित जप कर रहे हैं, उस समय कोई संसारिक चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी तरह के बात और महामंत्र जपते समय किसी तरह के बात करना वैसे ही महामंत्र का अपमान है। वैसे क्या उससे ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा है, जैसे कोई फास्ट ट्रेन राजधानी जा रही है उसको रोक करके कोई मालगाड़ी या कोई लोकल पार करने लगे और उसको स्टेशन पर पहुंचा कर नहीं बीच में ही रोक दिए क्योंकि लोकल पार करना है, बहुत आवश्यक काम आ गया तो जहां जंक्शन है वहां पर पहुंचा कर तब बात करना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक आ गया तब माला बीच में जपते जपते चल रहे हैं, मन का बीच में है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मायापुर वासी मार्केट चले जाना, देखो वहां से ऐसे अचानक ऐसे नहीं करना चाहिए। जब पूरा हो गया, जब याद आ रहा है तो थोड़ा संभलिए, जंक्शन पर पहुंच जाए, इसके बाद रुक कर तब बात कीजिए, नहीं तो अगर आप कोई बीच में बात करते हैं तो इसको नाम अपराध कहते हैं। और नाम अपराध और शुद्ध नाम और नामाभास, तीन तरह के नाम जप होता है। एक नामाभास है, किसी तरह नाम उच्चारण कर लिए जान अनजान में तो वो नाम भी आपको नरक से बचा देगा। जैसे अजामिल अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण, तो जमपास तो कट गया लेकिन वही पर्याप्त नहीं है, वो वैकुंठ नहीं दिया, उससे उसको शिक्षा मिली और जाकर हरिद्वार में शुद्ध नाम जपा तब भी मान आया। शुद्ध नाम बिना टेंशन के, बिना अपराध के। और जब नामापराध करते हैं तो शहर वालों को अनुभव है वो जाम में फंस जाते हैं, न बैकुंठ जाते हैं न नरक जाते हैं, बीच में पड़े रहते हैं। नरक भी नहीं जाते नामापराधी, लेकिन जाम में फंसे रहते हैं, जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाते, देर हो जाता है, कई जन्म लग सकता है। तो जाम में फंसना अच्छा नहीं है ना। शुद्ध नाम जप करके एकदम डायरेक्ट भगवत धाम लिफ्ट से जाए, सीढ़ी से नहीं, एकदम जप करके। तो इस तरह नाम जपना चाहिए। वाणी का उपयोग है वाचा मनसा इंद्रियई वा, इंद्रियों से, हाथ से, पैर से, आंख से, भगवान को देखना, भगवान के लिए काम करना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान के मंदिर में धाम में जाकर परिक्रमा करना, मंदिर मार्जन करना, भगवान के लिए माला बनाना, श्रृंगार करना, सब इंद्रियों से भगवान के लिए करना, यह अंतर है। तो इस प्रकार अगर कोई भगवान के लिए करता है, कुछ करने में गलतियां भी हो जाती है, नहीं ठीक से होता है, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जैसे बच्चे की तोतली आवाज माता पिता प्रसन्न करते हैं कि बात करता है, अगर बच्चा कुछ न बोले, चुपचाप रहे 5-7 वर्षों तक बोले ना, तो माता पिता को टेंशन हो जाएगा, गूंगा हो गया क्या। और ठीक इसके विपरीत बच्चा बोलना चालू किए और तोतली भाषा में गाली भी दे तो माता पिता खुश होते हैं। अच्छा से पापा कहे हो तो बहुत अच्छी बात है, थाला कहे तब भी अच्छा लगेगा। साला अगर तोतली भाषा में साला कहना सीख गया, साला नहीं कहता थाला कहता, तो थाला भी कहता है तो पिता लोग माता लोग खुश होकर दूसरे को देखिए ना, गाली सीख गया है, खुश होकर बताते हैं। और तब का थाला तो उसको धीरे से मारते भी हैं लेकिन सुनना भी चाहते हैं, और दूसरों को सुनाते भी हैं कि देखिए ना इसका आदत बिगड़ गया, तो बिगड़ गया तो तुम क्यों बिगाड़ रहे हो, फिर कहते फिर सुनना चाहते हैं उसके मुंह से थाला। उसी प्रकार भगवान जैसे साधारण माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उससे करोड़ों गुना प्रेम भगवान अपने भक्तों से करते हैं। अगर वह भक्त किसी भी तरह भगवान का गुणगान करता है, उठपटांग भी उसको नहीं करने आता है, तब भी भगवान स्वीकार करते हैं। इस शुद्धता पर विचार नहीं करते। कहा गया है कि विद्वान लोग जान कर कहते हैं विष्णवे नमः, संस्कृत को जानते हैं तो रूप जानते हैं कि विष्णवे नमः विष्णु के लिए नमस्कार है, और कोई अनजान विष्णवाय नमः कहता है, नहीं जानता है विष्णवे विष्णवाय में क्या अंतर है, तो दोनों को स्वीकार करते हैं क्योंकि भावग्राही जनार्दन, वो जानते हैं मेरे लिए ही कह रहा है, कहने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह भगवान हमारी टेंडेंसी देखते हैं क्यों किस लिए कर रहा है। तो और फिर आत्मना वानुसित स्वभावत, मेरा स्वभाव जो जन्म जन्मांतर का है अहंकार है, अहंकार भी भक्ति है। अगर भजन नहीं भी कर रहा है और मन में अहंकार है कि मैं स्कान का हूं मैं कृष्ण का हूं, यह भी एक सेफेस्ट विचार है। अगर वो इस कान का है कि तो साईं के पास नहीं जाएगा, वो पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, यह अहंकार है ना, वो सेफेस्ट स्थिति में है, अपने भावना में है मैं कृष्ण का हूं मैं कृष्ण का हूं, यह इतना सुरक्षित विचार है कि वह किसी के दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मैं भक्त हूं इस भावना में। एक बार बिहार की घटना है, एकदम देहात के निपल गंवार व्यक्ति, महाराज पूछे कि भजन हो रहा है, तो कहा महाराज चाप के भजन होता है। तो भोजपुरी में अपना भजन तो चाप के चल रहा है। महाराज कहे कि मतलब, तो मंगल आरती होती है ना महाराज, हमने के घर गृहस्थ आदमी मंगला आरती कहाँ होता, तो कहे कि अच्छा तो मैं वही था, ऐसा नहीं कि दूसरे से सुना हूँ, डायरेक्ट सुनी हुई घटना। तो तब फिर क्या करते हैं, कब जगते हैं, अरे दिन भर काम धंधा करते करते, भोजपुरी में बोल रहा था, काम धंधा करते करते ऐसे ही दिन भर थके रहते हैं, खेती गृहस्थी हल कुदाल क्या क्या, आते हैं 9-10 बजे बेहोश होते हैं महाराज, सुबह हो जाता है एकदम, अब घड़ी वड़ी तो नहीं देखते, 5-6 बज जाता होगा, और जगने के बाद अब गायों को भैंस को खिलाना पिलाना जैसे तैसे घर गृहस्थी के नाना जंजाल, वो 9-10 बजे नहाते हैं। तो कहते हैं तो जब, अरे जब कहाँ होता है, जब कभी नहाने धोने के बाद दो माला चार माला 16 माला तो मुश्किल से कभी कभी खाली रहते हैं तो पूरा होता है। आप गुरु हैं महात्मा हैं, आपसे झूठ बोलकर हम किस नरक में जाएंगे, इतना बढ़िया साफ साफ बोल रहा था, अगर हम आपसे झूठ ही बोल दें तो ये पाप लगेगा नरक होगा, जो सही असली बात है वो बताता हूँ। दो माला चार माला, किसी दिन काम धंधा कम है तो 16 माला भी हो जाता है, नहीं तो वही 2-4 माला हो जाता है। कहते अच्छा भोग लगता है घर में, ठाकुर जी हैं, आरती वरती होती है, आरती के करी आरती कौन करेगा, तो भोग लगता है तो दीक्षित नहीं था, दीक्षित ऐसा नहीं कि दीक्षित भक्त ऐसा कर रहा था, तो कहे कि अच्छा भोग लगा कर खाते हैं, तो वही जो सामने आता है ऐसे लहसुन प्याज मांस मछली तो खाते हैं, नशा फसा कुछ नहीं करते, लेकिन जो आता है उसी को ठाकुर जी के गोल लाकर याद करके खा लेते हैं, भोग लगा लेते हैं अपने से। अब अपने कारण घर के सब लोगों को कौन झगड़ा करे, हम कृष्ण भावना में नहाए, हम इस्कान के हैं, हम हरे कृष्ण वाले हैं, बाकी सारे परिवार के लोग थोड़े हरे कृष्ण वाले हैं कि भोग लगाएंगे। तो कहने अच्छा, तो फिर भागवत पढ़ते हैं। जान बूझ कर महाराज पूछ रहे थे, वो हंसने के लिए मजा ले रहे थे, अब भागवत पढ़ने। अजीब बात बता, हमने के ब्रह्मचारी हैं जा। हम लोग ब्रह्मचारी हैं कि भागवत पढ़े, गृहस्थ आदमी फुर्सत कहाँ है भागवत पढ़ते हैं। भागवत वगत नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी आपके यहाँ आ गए, कथा वथा में तो सुन लिए, बस हम लोगों से इतना ही हो जाता है, काफी है। तो तब तो फिर चाप कर भजन क्या हो रहा है। तो जप हो ही नहीं रहा है, भागवत पढ़ ही नहीं रहे हैं, मंगला आरती करते ही नहीं, भोग लगाकर खाते ही नहीं, आरती करते नहीं, तो भजन क्या करें। भजन को ही ऐसे चाप दिए कि बड़ा सुंदर उतर दिया। श्याम सुंदर जी कहे वाह, तो कहा कि महाराज हम हरे कृष्ण के हैं, ये पक्का विश्वास है, ये हम भगवान के हैं। तो महाराज श्याम सुंदर जी कहे कि अहंकार भक्ति करते हैं। और कुछ नहीं, हम अहंकार भक्ति करते हैं। तो ये है अहंकार भक्ति। अब वो अपने को हरे कृष्ण का मानकर तिलक भी लगाता था, कंठी भी, झोली भी लिया था, सब चीज, लेकिन अहंकार भक्ति है कि हम हरे कृष्ण के हैं। अब मजाल की कोई दूसरा संप्रदाय वाले उसको कुछ समझा देंगे। सवाल ही नहीं है, कोई दूसरा उसको उपदेश कर दे कि ये ठीक है वो ठीक है, ना पक्का हरे कृष्ण का है। तो यह है अहंकार भक्ति, और इसका भी महत्व है। अब अहंकार भक्ति है तो भागवत सप्ताह हो रहा है तो निश्चित आएगा, हरे कृष्ण का है। अगर कोई कह दिया काहो हरे कृष्ण, कथा होता तो एजेंट हलता भोजपुरी, वहाँ कथा चल रही है, आप यहाँ घूम, अरे जाना तो पड़ेगा ही, कथा हो रही है महाराज जी का, अब छोड़ छाड़ कर काम आएगा, ये अहंकार भक्ति है। तो इस प्रकार ये अहंकार भक्ति अगर भावना हो कि हम कृष्ण के हैं तो कृष्ण के लिए कुछ करेगा, सोचेगा, तो उसका अहंकार होना चाहिए कि मैं कृष्ण का हूँ। अहंकार के कारण मैं शुरू में बतलाया कि लोग अहंकार के कारण दिन दिन भर टीवी देखते हैं, हमारी इंडिया खेलता है, दूसरा ये देख कर जिताना चाहते हैं, ये देखिए। और इतनी बड़ी मूर्खता कि आप लोग शहर के अनुभव, उस पर पैसा भी रखते हैं, ये जीतेगा वो इतना रन करे, हाय रे मूर्खता, मैं तो परेशान हो जाता हूँ सुनकर। तो ये है अहंकार, और वही अहंकार हो कि मैं कृष्ण का हूं तो अनुसृत स्वभावत अपने रुचि के अनुसार कृष्ण सेवा करनी चाहिए। जो स्वभाव है, स्वभाव संस्कार से बनता है, जो अपने जीवन में ज्यादा रिपीटेशन करता है वह एक संस्कार के रूप में बन जाता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलाकार है, कोई मैनेजर है, तो जो जिसके पास जैसी क्षमता है उसी क्षमता को कृष्ण में प्रयोग करना है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं प्रभुपाद की सेवा में, उन प्रभुपाद लीलामृत में उनकी कथाएं हैं। एक से एक इंजीनियर अपनी बुद्धि लगाए हैं, एक से एक चित्रकारी करके पेंटिंग किए हैं, जो विश्व के सबसे सुंदर पेंटिंग कृष्ण का डीवीटी के पास है, सबसे सुंदर चित्र कृष्ण का जैसा वर्णन है, एकदम देख देख कर भागवत का श्लोक लिख कर प्रभुपाद अनुवाद लिख कर देते थे और उसको देख देख कर पेंटिंग करते थे भक्त। प्रभुपाद कहते थे महासमाधि में है। अब एक फल वाली फल लेकर आई, कोई फल ले लो फल ले लो, कृष्ण आ गए दौड़कर, अपने हाथ में कुछ अनाज लेकर, अनाज रास्ते में ही गिर गया, उसके टोकरी पर डालकर दो चार अनाज दो दे दिए ना, अनाज लेकर आए वो गिर गया वो क्या करें, दे दिए दो। तो उनको देख करके इतना खुश हो गई कि टोकरी से उठा उठा कर दे रही, मुंह ही देख रही है, ऐसा भागवत में वर्णन है। फल उठा कर दे, एक दो से नहीं यहां तक आ गया फिर भी ले रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हु बहु उसी चित्र को पढ़कर पेंटिंग करके बनाया गया है महासमाधि में। वो पेंटिंग करने वाला भक्त देखता है भगवान को उस रूप में, जैसा वर्णन है, जैसा वर्णन है वैसा देखता है। इसको कहते हैं अनुसृत स्वभावात, जिसका स्वभाव जैसा है वैसा। एक बार बंगाल में भी 2 साल पहले कहाँ कथा करते हैं नहीं, रेलवे स्टेशन के पास आद्रा, आद्रा आद्रा एक है बंगाल बिहार झारखंड के बॉर्डर पर। तो एक बार मायापुर से कथा करके आ रहे थे, तो एक भक्त बहुत आग्रह किए थे, तो एक दिन के लिए मैं केवल जा सका वहाँ। तो दिन में हम लोग पहुंचे थे, शाम को 7 बजे से प्रोग्राम था। तो एक स्टूडेंट आया इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो भगवत गीता एजीटी लिया था हाथ में। तो आकर वहाँ के व्यवस्थापकों से कहा कि मैं प्रभु जी से एकांत में मिलूंगा। तो लोग आग्रह किए कि आपसे एक मिलना चाहता है। क्या वो एकांत में क्यों मिलेगा, हमारे रूम में 2 भक्त और थे, 2 ब्रह्मचारी। तो कहा नहीं, एकांत में मिलूंगा। तो नहीं, युवकों की पता नहीं क्या समस्याएं होती है। तो कहे नहीं प्रभु जी बहुत आग्रह कराए, मिल लीजिए। मैं कहा ठीक है। तो जो 2 लोग थे, मैं कहा ठीक है जाइए। आया तो आते ही मैं भागवत ऐसे पढ़ रहा था शाम के वो क्लास देने के लिए, तो अपना गीता मेरे हाथ में दिया है। कहा प्रभु जी इसको लीजिए, ले लिया। आप भागवत पढ़ते हैं, गीता लिए हैं, भक्त हैं, आप कसम खाकर कहिए, गीता का कसम खाकर, कि आप भगवान को देखे हैं। मैं कहा तुम्हारा यही जिज्ञासा है? तो कहा कि हाँ हमारा यही जिज्ञासा है। तो थोड़ा सा मुझे तो क्षोभ भी हुआ कि आप बेवकूफ जैसा पूछ रहा है। दोबारा कहा कि मैं सही पूछ रहा हूँ, मेरे मन में यही जिज्ञासा है, आप भगवान को देखे हैं? तो मेरे मुंह से अचानक निकल गए हाँ। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, जयदेव जी की तरह नाम रखता है, तुलसीदास सूरदास की तरह, विद्यापति की तरह, 3 लोगों का नाम रखा, सूरदास विद्यापति और जयदेव, बिल मंगल ठाकुर की तरह, आप भगवान को देखे हैं? तो मैं कहा हाँ। तो कहा कि आप बतलाइए कैसे देखे हैं, जिससे मुझे भी विश्वास हो जाए, आप केवल हाँ कहने से नहीं, मुझे भी एहसास हो कि आप भगवान को देखे हैं, वैसा बतलाइए। तो मैं कहा कि अच्छा आप बताओ, आप क्रिकेट मैच देखते हो? तो कहा कि हाँ देखे हैं। अच्छा रेडियो से कभी कमेंट्री सुने हो? तो कहा हाँ रेडियो से, ज्यादा तो हम लोग रेडियो से ही सुन लेते हैं, नेचुरल बात करने लगा। तब मैं कहा कि ठीक है, जैसे आप रेडियो से कमेंट्री देखकर मैच सुनकर मैच देखते हैं, वो जो कमेंटर है फील्ड में बैठकर कमेंट्री करता है कि वो बल्ब सचिन के हाथ से 6 रन छक्का, तो आप देखते हैं ना कि सचिन मारा बाउंड्री वाल से बाहर 6 रन, देखता है वो, बोलता है, और आप कान से देखते हैं, आंख से नहीं, कान से देखते हैं ना। तो कहा कि हाँ, तो वैसे ही जयदेव विद्यापति तुलसीदास बिल्व मंगल और रूप सनातन जैसे कमेंटर अपने लिखते हैं भगवान के स्वरूप, उसको पढ़कर सुनकर हम भगवान को देखते हैं। हम अपने आँख से नहीं देखते हैं, हम कान से देखते हैं, आँख से नहीं, या हम पढ़ कर देखते हैं। वैसे देखने वाले कमेंट्री करने वाले जो कमेंट्री लिखे हैं, उसी के आधार पर हम भगवान को देखते हैं। और ज़्यादा ज्ञान आँख से नहीं होता है, कान से होता है। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग क्लास में दिखाया नहीं जाता है, सुनाया जाता है। और सुन कर आप विश्वास करते हो कि सूरज थाली के बराबर है? देखने में तो यही लगता है एक थाली के बराबर है, लेकिन क्या आप इसको मानने पर तैयार हो? क्यों देख रहे हो थाली के बराबर हो है, लेकिन कहते पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, क्योंकि यही सुनते आए हो। तो जिस तरह से सुनकर तुम सूर्य के विषय में ज्ञान रखते हो, वैसे ही मैं सुन और पढ़कर भगवान को देखता हूँ, समझा? तो एकदम चरण पकड़ लिया महाराज, ठीक है सॉरी मैं आपको परेशान किया, मुझे जाना है। मैं कहा नहीं नहीं जाना नहीं है, आज सुन कर जाना है, तो फिर हमको बस नहीं मिलेगा ये वो लगा करने। मैं कहा नहीं नहीं मिल जाएगा, तब तक भक्त लोग कुछ आ गए बगल के जहाँ वो रहता था, उधर से गाड़ी लेकर स्कान कुछ भक्त आए थे, तो लोग कहे कि हम उधर जाएंगे, उन लोगों से परिचित था। तो कहा कि ठीक है प्रभु जी लोगों के साथ चले जाएंगे, सुन कर जाएंगे। तो सुन कर प्रोग्राम गया और संकल्प लिया कि आज के बाद जप करेंगे, माला लेंगे। गीता वो मायापुर से लिया था, इंग्लिश का गीता, भगवद गीता एज इट इज, लेकिन उसके मन में स्वाभाविक मुझे तो पहले क्षोभ हुआ कि बेढंगा पूछ रहा है, लेकिन भगवान की कृपा से अचानक ऐसा ऐसे उदाहरण आया और वो स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से कभी कभी हम लोग जो भी अपना आदत है उसी को बस दूसरे रूप में समझते हैं। तो सब कुछ परम पुरुष भगवान के लिए है यह समझ कर समर्पित कर दें, यह है भागवत धर्म। हम रोज खाते हैं, बिना भोजन खाए काम नहीं चल सकता, लेकिन उसको कृष्ण को अर्पित करके खाना है। कोई जरूरी नहीं अलग से डीटी रूम बनाकर, डीटी किचन बनाकर तब भोग लगाएंगे। जो खाते हैं उसी को कृष्ण को अर्पित करना है। जो खाते हैं मतलब बेढंगा मांस मछली नहीं, जो कृष्ण खा सकते हैं वो। और कृष्ण को पता है कि ये लोग बेचारे दुनिया के लोग परेशान हो जाएंगे फैक्ट्री कंपनी वालों से, इसलिए कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयक्षति। 75% आइटम पेड़ से मांगते हैं, कोई फैक्ट्री से नहीं। पत्र पुष्प और फल और जल धरती में सर्वत्र है ही, एक भी आइटम फैक्ट्री का नहीं बनाए बतलाए। कहते हैं वो मुझे समर्पित करो, फिर भी ये बेईमान लोग उस पेड़ के चीज को स्टिकर साट कर कंपनी का बना देते हैं। कहते हैं मेरा है। महाराज श्री कहते हैं कि एक अमेरिका में एक 14 साल का लड़का फ्रिज से ऐसे एप्पल निकाला भोग निकालने के लिए, तो उस पर स्टिकर सटा हुआ था। मैं कहा कि अच्छा तुम जानते हो ये एप्पल कहाँ आता है, कहाँ से आया है? कहा कि हाँ महाराज, कहाँ से? तो उसके स्टिकर पढ़कर कहा कि इस कंपनी से। तो कहे कि अरे ये तो नहीं जानते हो, ट्री से फलता है, पेड़ में लगता है। तो कहा, गुजराती लड़का था, तो कहा कि ट्री से? एकदम चकित हो गया। तो उसकी माँ भी बगल में थी, तो वो कहे कि ये नहीं जानता है क्या कि ये पेड़ से सेब फलता है? तो कहता वो कहीं पता नहीं। कहीं मम्मी ट्री से फलता है, ट्री में आता है कि फैक्ट्री से कंपनी से? तो उसको भी आश्चर्य हो रहा था कि नहीं जानता है। तो महाराज कहे अच्छा ठीक है, ये दूध कहाँ से आता है? तो दूध भी डेयरी से आता है। तो कैसे बनता है? पता नहीं, डेयरी वाले बनाते होंगे। उसको कुछ पता नहीं था कि गाय और भैंस से आता है, एकदम नहीं पता था, अपने जीवन में देखा ही नहीं था दूहते हुए दूध, एकदम नहीं देखा था कि दूध गाय से या भैंस से दूह कर निकाला जाता है। ये स्थिति है लोगों का, और विकसित देश के हैं, विकसित लोग हैं। जब मुझे याद है 85 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय मैं एक रविवार या कोई पत्रिका था, तो उसमें मैं पढ़ा था हिंदी पत्रिका कि वो कुछ कृषि फार्म में गए थे देखने के लिए खेती। तो देखते देखते मिर्चा के फल पर उनकी दृष्टि गई और वहीं खड़ा हो गए और उसको झुक कर देखने लगे। क्या आश्चर्य का विषय था कि एक ही पेड़ में दो रंग का मिर्चा फला था, लाल और हरा। तो उनको बहुत भारी आश्चर्य, रेड और ग्रीन, एक ही वृक्ष, एक ही पेड़ में लाल भी है और हरा भी है। आश्चर्य में हो गए, विशेष ध्यान से देखने लगे। अब कल्पना कीजिए कि वो उनको पता ही नहीं था, बेचारे जीवन में नहीं देखे थे। वो जानते थे कि लाल वाला अलग पेड़ होगा, हरा वाला अलग। हरा ही लाल हो जाता है पक कर, उनको पता नहीं था। बहुत देर तक आश्चर्य में उसके पास खड़ा होकर उसको बार बार देखते, एक ही पेड़ का है कि दूसरे का है, बार बार देख रहे थे। तो जिज्ञासा भी किए कि अरे एक पेड़ में ग्रीन और रेड, ये देखो आश्चर्य। तो जिनको पता ही नहीं है कि संसार को किसने बनाया है, कौन बना रहा है, कैसे चल रहा है जगत, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? अनजान लोग, हम लोग कर रहे हैं, परिश्रम करते हैं तो हम कमाते हैं तो खाते हैं, हम ईमानदार हैं, हम किसी का लूटते नहीं, किसी का चोरी नहीं करते, हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। प्रभुपाद कहते हैं चोरों की ईमानदारी है, चोरों की ईमानदारी है। चोर किसी घर में, दो चार घर में चोरी करके, परिश्रम करके बेचारे कुछ गहना सोना रुपया पैसा लाए, और एक जगह बैठकर चार पांच लोग कहते हैं भाई परिश्रम सब किया है कम बेसी, लेकिन बराबर बराबर हिस्सा लगना चाहिए, ईमानदारी से बांटना, बेईमानी मत करना, बराबर बराबर ईमानदारी से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक ही सब टोटल लेकर भाग जाए तो इसमें क्या गलत चीज है, अगर बराबर बांट ही दिया जाए तो ईमानदारी बीच में क्रिएट, टोटल माल बेईमानी का और बीच में ईमानदारी आ गया, बीच में ईमानदारी क्रिएट कर लिए। आप कुछ भी यहां कमाते हैं, चाहे सोना के खान से या पृथ्वी के अंदर से कोयला अबरख लोहा कुछ भी निकालते हैं, या गेहूं चावल या फल फ्रूट जो भी, जहां से भी कुछ कमा रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब भगवान का है। कोई किसान गल्ला तैयार किया है गेहूं का धान का अपने खलिहान में, और वो तैयार करके घर चला गया, बस दूसरा उठाया, लीजिए दान देता हूँ एक बोरा दो बोरा, जिसको ले जाना हो ले जाओ, अगर वो दे दिया दस बीस लोग ले गए तो दाता है कि पीटा जाएगा, बताइए। माल दूसरे का और बीच में दानी बन गया। टोटल संपत्ति भगवान की, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुधिरेव च अहंकारमिति अम्मे भीना प्रकृति अष्टधा अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। उसमें भी बुद्धा, मूर्ख लोग नहीं भजन करते, डल माइंडेड नहीं, बुद्धा भाव समन्विता, वो जानते हैं। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिक्षति, भगवान को पता है। तो इस प्रकार यह इस भाव से जो भगवान का भजन करता है कि सब कुछ भगवान का है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत एहसास एहसान लाद दिया कुछ दे दिया उनको, उनका ही उनको देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग देना नहीं चाहते। और मान लो एक दूसरा उदाहरण कि भगवान कैसे लेना चाहते हैं, कोई कोई कहता है कि जब भगवान का ही सब कुछ है तो उनको क्या देना है, वो तो सबके मालिक हैं, उनको क्या देना है, इस तरह की मूर्खता। अब बताइए जो नहीं देता है उसको देना है, जैसे कोई बाप मार्केट से मिठाई खरीद कर लाया, एक डब्बा एक किलो आधा किलो मिठाई लाया और एक अपने पांच सात वर्ष के बच्चे के हाथ में दे दिया, और बच्चा हाथ में लेकर खुश हो गया मिठाई, तब तक डब्बा पाकिट खोला तो एकदम खूब गदगद है, खुश है, तो बाप कहा कि बेटा मुझे भी दो, ना हाथ में आ गया ना, और वो भाग रहा है, कहे बेटा एक पीस मुझको दो, ना एकदम ना, अब भागता है। तो बाप क्या सोचेगा, ये कितना हरामी है बेईमान, ये खरीद कर मैं लाया मुझे एक पीस नहीं दे रहा, क्या सोचेगा कोई बाप, सोचिए क्या वो सोच सकता है। अगर वो पॉकेट खोले, कोई एक दूसरा लड़का पॉकेट खोला और खोलने के बाद देखकर खुश हो गए, पापा आप पहले ले लीजिए, कितना खुश हो जाएगा, नहीं नहीं बेटा तू खाओ, नहीं आप एक पीस ले लीजिए, तो केवल उसको इतना कहने मात्र से ही पिता खुश हो जाएगा, उसको नहीं चाहिए, लेकिन केवल दिखा देने से खुश हो जाएगा, वैसे ही भगवान खुश होते हैं। इन बेईमानों का खाते नहीं है, लेकिन खुश हो जाते हैं कि देखो हमको देकर खा रहा है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव वह समर्पय, बस समर्पित किए भगवान स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है बेटा जितना है उतना ही थाली दे देते हैं, एक दाना भी नहीं खाकर कम करते, देख कर स्वीकार कर लेते हैं, अथवा खाकर उतना ही छोड़ देते हैं। ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्छते, भगवान के खाने के बाद भी वो वैसा ही शेष बचा रहता है, उनके दृष्टि से वो प्रसाद ज्यों का त्यों रहता है, वो भगवान की कृपा उसमें आ जाती है। इस प्रकार लोग नहीं समझ पाते इस रहस्य को ये भगवान के भोग लगाने में क्या साइंस है, वो पदार्थ स्पिरिचुअल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। श्रील प्रभुपाद भगवत प्रसाद को टाइम बम कहते थे। एक हमारे टीचर थे बनारस में, एक शास्त्री जी, तो हमको देखे जब मैं 84 में उनसे मिला। संस्कृत पढ़ने का थोड़ा शौक था, तो लाल पहने हुए अवस्था में गया, तो मुझको देखते ही तिलक उलक देख कर कहे, गौड़िये हो? मैं कहा हाँ, इस्कान के हैं। इस्कान? मैं कहा हरे कृष्ण वाले। अच्छा, भक्ति वेदांत स्वामी वाला? तो मैं कहा हाँ। अच्छा, उनके शिष्य हो? मैं कहा नहीं, उनके शिष्य के शिष्य हैं उनके। अच्छा, जो वो अंग्रेजों को दीक्षा देते थे, सन्यासी बनाए, भक्ति वेदांत स्वामी? तो कहने हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के शिष्य के शिष्य। तो उनको एक घटना स्मरण आई जो मुझको बहुत अच्छा लगता है, मैं बार बार कह देता हूँ। तो कहे कि जब हम लोग वृंदावन गए थे, बनारस की घटना है, वृंदावन गए थे हम तीन टीचर वहाँ करपात्री जी के साथ। तो करपात्री जी के जो आश्रम था उसके बगल में ही अंग्रेजों का एक मंदिर बन रहा था, 75-76 की घटना है, 74-75 जो भी है। तो मंदिर बन रहा था, खूब सुंदर माइक में सुबह शाम कीर्तन करते थे, तो अच्छा लगता था। वहाँ हम लोग एक आध हफ्ता रुके थे, तो क्या नाम है, विद्या धर्म संघ आज भी है जो पुलिस चौकी के पास। तो धर्म संघ में करपात्री जी रुके थे, तो हम लोग गए, बगल में ही था, तो तीनों गए मिलने के लिए शाम के 4 बजे के आसपास। तो पूछे कि भाई आप लोगों के गुरु जी कौन है, कहाँ है, तो बतलाए लोग। तो गए मिले, भक्ति वेदांत स्वामी बैठे थे कुछ लोग उनके साथ। तो हम लोग जाकर उनको प्रणाम किए, बैठे, बतलाए काशी से आए हैं, तो बड़ा आदर से बातचीत किए, बहुत स्नेह सौहार्द से बात किए। कहे आप लोग सौभाग्यशाली हैं, काशी के पंडित हैं, आप लोग नाम का प्रचार कीजिए, भक्ति का, बहुत अच्छा भक्ति के विषय में, नाम के विषय में बताए। तो जो भी बातचीत हुआ, हम लोग चलने लगे, तो मिश्री और कुछ तुलसी पत्र प्रसादी दिए। इसके बाद प्रसाद देकर जब हम हाथ में लेकर उठे, तो कहे रुकिए रुकिए, लाओ वो टाइम बम दो, टाइम बम इन लोगों को। तो हम लोग सोचे कि अंग्रेज लोग बम एकदम खड़ा हो गए, सक पका गए कि ये लोग बम भी रखते हैं। हम लोग कहाँ फंस गए, एकदम डर गए कि अब क्या करें स्वामी जी, ये बम तो वो शास्त्री जी बहुत तेज तरह टीचर थे, ये स्वामी जी बम क्या होगा? तो कहेगी रुकिए रुकिए बताते हैं। तो लेकर भक्त आया, दोना में वो राजभोग, बड़ा रसगुल्ला, बड़ा बड़ा एक एक दोना में तीनों को दिया। तो तीनों जब हाथ में ले लिए, तो कहते मैं पूछा कि स्वामी जी इसी को टाइम बम कहते हैं? तो कहते हाँ, यही टाइम बम है। टाइम बम है? तो कहे हाँ, ये कृष्ण का स्वीकार किया हुआ प्रसाद है, इसमें कृष्ण की शक्ति उतर कर आया है, एक न एक दिन चित्त को शुद्ध करेगा। कही इतना सुंदर बोले कि ये बात मुझको आज तक याद है। कह रहे थे कि इतनी अच्छी बात कहे कि ये कृष्ण की शक्ति इसमें आया है। और यही नहीं, पता तो नहीं चलता है, जैसे वायर है करंट का, बिजली का, देखने से नहीं पता चलता कि उसमें करंट है कि नहीं, लेकिन जरा टच करके देखो, जो करंटेड है उसका असर अलग है, जिसमें नहीं है उसका असर अलग। तो देखने में तो वैसा ही लगता है प्रसाद रसगुल्ला, लेकिन एक कृष्ण शक्ति से करंटेड है, और जो नहीं अर्पित है उसमें कोई असर नहीं है। तो इसको खाने पर चित्त शुद्ध होता है और भगवान की भक्ति मिलती है, उनमें मन लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, यह इतना महत्वपूर्ण कि यह बात मैं भूल ही नहीं पाता हूँ कि वो भोग लगा कर खाना चाहिए। एक बात केवल 10 मिनट में समझा दिए प्रभुपाद जी, 10-15 मिनट 20 मिनट जो रहे हों उनके पास, उतना में ही प्रभुपाद जी उनको मैसेज दे दिए कि क्या करना चाहिए। बहुत भारी कथा नहीं सुनाए एकदम, इसीलिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहा जाता है। दे दिए उनको एक, वास्तव में स्वामी जी का यह भाव मुझको बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम भोग लगाकर खाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। बस यही भागवत धर्म, खाना वही है, करना वही है, वही खेती, वही बारी, वही दुकानदारी, वही बिजनेस, वही व्यापार। करोति यज्जत सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेतत्। बस नारायण को समर्पित कर देना है। कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यज्जत सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेतत्। यह है भागवत धर्म। मैं तो एक ही श्लोक पर फंस गया, बहुत श्लोक अभी बाकी है, फिर आगे चलते हैं। तो अब एक प्रश्न होता है कि अज्ञान के कारण जो जीव को दुख हो रहा है वो भक्ति करने से कैसे समाप्त हो जाएगा। अज्ञान के कारण दुख है, जब रज्जू को रज्जू ही नहीं समझेंगे तब सर्प का भय कैसे जाएगा। अगर अंधेरा में अचानक एक रस्सी पड़ा है और रस्सी को देखकर हमको ये भ्रम हो गया कि सांप 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 सांप, डर गए और भागने लगे और अचानक गिर गए, हाथ पैर भी टूट गया, तो इस प्रकार अगर मन में भय आ गया है कि सांप है सांप है, तो भय तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसको देख नहीं लेंगे कि वो रस्सी है। कोई टार्च वाला आया, कहा क्या है, क्या हो गया, सांप, जब ही टार्च, अरे तो रस्सी है, सारा भय खत्म। तब भय समाप्त होता है जब ये पता चल जाता है कि रस्सी है, रज्जू है। तो फिर भक्ति करने से कैसे जाएगा, जो अज्ञान छाया है वो तो ज्ञान से जाएगा ना। तो फिर यह उत्तर है कि माया के द्वारा अज्ञान लादा गया है, इसलिए मायापति का भजन करने पर अज्ञान जाएगा। तब कहते हैं बहुत सैद्धांतिक श्लोक, सबसे बड़ा सैद्धांतिक श्लोक बोल रहे हैं, भयम द्वितीया अभिनिवेश स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यय स्मृति तन्मायया तो बुध आ भजेतम भक्तैक एषम गुरुदेवतात्मा। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ईश्वर तत्व, जीव तत्व, देह, द्वितीय अभिनिवेश, माया, भय, गुरु और स्वरूप, भक्ति, सब कुछ बता दिया गया है एक ही श्लोक में। कहते हैं द्वितीय भयम द्वितीय अभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्यय स्मृति तन्माया तो बुध आ भजेतम भक्तैक एषम गुरुदेवतात्मा। ईशाद अपेतस्य तत्माया अस्मृति, ईश्वर से विमुख होने के कारण जब जीव ईश्वर से विमुख होता है, ईश्वर के तरफ से अपना मुख मोड़कर संसार के तरफ देखता है, तत् माया अस्मृति, तब माया उसको पकड़ लेती है और उसको अस्मृति होता है। अस्मृति मतलब स्मरण नहीं है कि मैं क्या हूं, ईश्वर का अंश हूं, अपने स्वरूप को भूल जाता है अथवा भूला हुआ है अनादिकाल से भूला हुआ है, वो जानता ही नहीं है कि हम कृष्ण के हैं। अस्मृति इसमें एक शब्द है। विस्मरण और अस्मरण में अंतर है, अस्मृति और विस्मृति दो चीज है। याद होने के बाद जब भूलता है तो उसको विस्मरण कहते हैं, और याद ही नहीं है उसको अस्मरण कहते हैं। याद ही नहीं है कि हम उनके ईश्वर के अंश है। जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, कृष्णे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे देश संसार दुख, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंड जने राजा जन नदी ते छुबाए। चेतन महाप्रभु उदाहरण देते हैं, कहते हैं कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण को जीव भूल गया है, कब भूला, किस डेट को, कहते हैं अनादि काल से भूला हुआ है। अनलिमिटेड टाइमिंग, कोई पता नहीं है। अनादि का अर्थ है कि गोविंद अनादि है, अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जब कृष्ण अनादि है और हमारा भूलना भी अनादि है, दोनों अनादि है, जैसे भगवान अनादि काल से हैं, वैसे हम भी अनादि काल के हैं, उनके ही अंश हैं, लेकिन कब से उनसे अलग हुए तो ये हमारा अलग होना भी अनादि है, याद ही नहीं, पता ही नहीं है। तो अनादि काल से भूले हैं उसको कहते हैं अस्मृति। तो अस्मृति होती है जब, तब क्या होता है, विपर्जय, उल्टी स्थिति हो जाती है, भ्रम हो जाता है, विपरीत अवस्था हो जाती है। हम कृष्ण दास हैं इस बात को भूल जाते हैं, हम अपने को भोक्ता, अपने को स्वामी, अपने को मालिक समझने लगते हैं। और मालिक ज्यों ही समझते हैं त्यों पिटाई चालू, भोक्ता ज्यों ही अपने को मानते हैं त्यों गड़बड़ हो जाता है। काशी के सब्जी मार्केट में बनारस के उधर सांड घूमते हैं बहुत रोडों पर, तो वो लोग सब्जी मार्केट में भी पहुंच जाते हैं और हरा हरा साग सब्जी देखकर सोचते हैं बस मेरे लिए ही रखा गया है। ज्यों ही मुंह लगाते हैं सभी दुकानदार डंडा लेकर बैठे हैं, पीटना चालू। तो वैसे ही ज्यों ही हम अपने को भोक्ता समझते हैं त्यों माया पकड़ लेती है, बेटा भोक्ता नहीं है, तब डंडा लगाती है। तब द्वितीय अभिनिवेश स्वतः दूसरा अभिनिवेश हो जाता है, विपर्जय होती है तब द्वितीय अभिनिवेश होता है। द्वितीय अभिनिवेश का अर्थ है पूरा पूरा खो जाना, अभिनिवेश अनुरक्ति के कारण द्वितीय अभिनिवेश होता है। जब द्वितीय अभिनिवेश होता है तो भयम स्यात, तब भय बन जाता है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, भागवत का एक टॉपिक है मोक्ष, अथ सर्गो विसर्ग च स्थानम पोषण मोतय मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय, मुक्ति। तो मुक्ति की परिभाषा क्या देते हैं सुध गोस्वामी, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अर्थात स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, अन्यथा रूपम हित्वा, जो हमारा अन्यथा रूप है उसको छोड़कर स्वरूपेण व्यवस्थिति इति मुक्ति, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अन्वय है कि अन्यथा रूपम हित्वा, जो हमारी बाह्य अवस्था प्राप्त हो गई है उसको छोड़कर जब हम अपने स्वरूपगत स्थिति में आ जाते हैं, यही है मुक्ति। हम जो अलग अलग अपना आईडी बना लिए हैं, हम गुजराती हैं, बिहारी हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बिहार यूपी वालों को महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहिए, ये हमारा है, तो इस तरह की जो हमारी आईडी है इसके कारण भय हो जाता है, ये मूर्खता हो जाती है। और जब ये भय, ये अभिनिवेश जब हटता है, हम किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये नहीं हमारा आईडी है, ये परिचय नहीं है, हम स्वरूपतः कृष्ण के अंश हैं और उनके ही दास हैं। यह उंगली क्या है, शरीर का अंश है, इसको काट कर अलग कर दो तब क्या होगा, लाश है, एक मांस का टुकड़ा, कोई इसका अस्तित्व नहीं है। जब इस शरीर के साथ जुटा है तब उंगली, तब हाथ, पंजा, यहां से काट दो तो ये मांस का टुकड़ा। तो जब तक जीव कृष्ण के संपर्क में रहता है तभी उसका अस्तित्व है, अलग से कुछ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका। पेड़ के साथ जब डालियां पत्ते जुड़े हैं तब तक पेड़ है पूरा, काट कर अलग रख तो सूख जाएगा, उसको पानी में भी डाल देने पर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि पानी से ही पेड़ हरा भरा होता है, लेकिन मूर्खता बस डाली को काट कर पानी में डाल दो तो उसे हरा रहेगा, जब तक वो पेड़ के संजोग में है तभी तक वह हरा भरा रह सकता है। उसी प्रकार जीव जब तक भगवान के संपर्क में है तब उसका अस्तित्व है, उनकी दासता में, उनकी सेवा में। हाथ का कर्तव्य है शरीर के लिए सेवा करना, शरीर के लिए काम करना, भोजन उठा उठा कर मुंह में डालना। अब मूर्खता बस कोई सोचे कि बादाम और दूध मिलाकर गर्म करके थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, एक गिलास आंख में डाल देते हैं, गर्म दूध बादाम के साथ आंख में डाल देते हैं तो फायदा करेगा, वो जो थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। उसका तरीका है कि उसको मुंह में डाला जाए, मुंह में डालने पर वो सब अंग को सप्लाई करता है। यथा तरोर मूल निशेच नैना तिप्यंति तस्कंद भुजो पशाखा, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने से सारे डाल पत्ता फूल सबको सप्लाई करता है, जैसे पेट में भोजन डालने से शरीर के सारे अंग को शक्ति सप्लाई करता है, वैसे श्री कृष्ण के भक्ति करने से सभी देवता देवी सारे लोग तृप्त हो जाते हैं, सबकी पूर्ति हो जाती है, किसी की जरूरत नहीं है सबकी। तो इस प्रकार कहते हैं भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात्, तो भय उत्पन्न हो जाता है तब। अतः बुधा बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आत्मा गुरुदेवता एकया तम भक्त्या ईशम आ भजेत। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने गुरु को ही अपना आराध्य जीवन का मार्ग निर्देशक मानकर उनके बताए हुए निर्देश से अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। अपने मन से भजन नहीं बना लेना चाहिए, वो एकदम निर्धारित परंपरा है, उस परंपरा का फॉलो करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। तो इस प्रकार समझने का कोशिश करना चाहिए। तो माया कैसे पकड़ती है, माया का क्या स्वरूप है, यह बतलाया गया। माया का अर्थ है, माया में दो अक्षर है, माया, मां माने नहीं, मां सूच गीता में आया है ना, मत सोचो नहीं, और या माने जो, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। जो कुछ हमारे दृष्टि में समझ में आ रहा है अपना है, ये है वो है, वह नहीं है, हमसे कोई जिसका संबंध नहीं है वो माया। माया मतलब भ्रम, पूरा पूरा भ्रम। सर्प को रसी समझ लेना, वैसे ही ये घर परिवार इष्ट मित्र दोस्त बैंक बैलेंस जो मुझसे जिसका कोई संबंध नहीं है उसको अपना समझना, यह है भ्रम। तो इस तरह के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं है, रसी है लेकिन सर्प की मान्यता एक गलत मान्यता है, हमारी समझ गलत है, वस्तु दूसरी है लेकिन समझ दूसरा रहे हैं, यह माया है। हम जहां पर पड़े हुए हैं वो हमारी एक कंडीशन है, एक परिस्थिति है, यह हमारा स्वरूप नहीं है, यह है माया। तो ईश्वर से विमुख होकर पुरुष को भगवान की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति भ्रम हो जाता है, मैं देवता हूं मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम विपर्जय हो जाता है। अतः देह आदि में अनुरक्ति हो जाती है और अनुरक्ति के कारण बुढ़ापा मृत्यु आदि अनेक भयों का सामना करना पड़ता है, सर्दी जुखाम बुखार बीमारी ये सब टेंशन पड़ता है, क्योंकि शरीर रोगों का घर है, वो रोग आएगा ही, लेकिन समझदार व्यक्ति को इसके फेरे में न पड़कर अपने गुरु को ही अपना आराध्य और प्रियतम मानकर उनके किए गए मार्ग निर्देश से अनन्य भाव से ईश्वर का भजन करना चाहिए, यह है। अब गुरु एक ऐसा दुरूह विषय हो गया है कि कैसे समझा जाए कौन गुरु है। शिक्षा और दीक्षा में खास अंतर नहीं है, जहां से जो मार्ग निर्देश मिलता है, यद्यपि गुरु समष्टि और व्यष्टि रूप में दो वेराइटीज है, एक सारे जगत को उपदेश करने वाले संपूर्ण विश्व के गुरु श्री कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वही भगवत गीता का उपदेश किए और उन्हीं के उस उपदेश से सारे दुनिया के लोग गुरु बने हुए हैं, उसी उपदेश को दोहराने के कारण। और एक व्यष्टि गुरु, व्यक्ति व्यक्ति गुरु उपदेश करता है। मूल रूप में गुरु कृष्ण की शक्ति है, वो है कृपा शक्ति, और वही कृपा शक्ति उतर कर किसी महापुरुष के अंदर आती है तो वह व्यक्ति हो जाता है हिज डिवाइन ग्रेस, उनकी कृपा, या हिज ग्रेस उनकी कृपा। उनकी कृपा से व्यक्ति वहां से कनेक्शन करके बल्ब जल रहा है, एसी चल रहा है, पंखा पावर हाउस से कनेक्टेड है, वहां स्विच ऑफ कर दिया जाए तो सब खत्म। कनेक्शन में जो कृष्ण के है उस कृपा के धारा को लेकर जीवों का उपकार करता है। तो इस प्रकार वो कृष्ण से कनेक्टेड होना चाहिए व्यक्ति को, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो यह है गुरु के द्वारा जीवों के प्रति उपकार। और उसमें खास अंतर नहीं है, दीक्षा गुरु का एक विशेष महत्व इस सेंस में है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर में गाइडेंस लेने से सुरक्षित व्यक्ति हो जाएगा, वो अपराध नहीं कर पाता है, एक वैष्णव धारा में पड़ जाता है। अब मनमानापन कभी यहाँ कभी वहां घूम रहा है, गंगा तट पर गया, आपका नाम गंगादास, जमुना के तट पर गया, आपका नाम जमुनादास, दुर्गा जी के मंदिर में गया दुर्गादास, शिवदास गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये सब छूट जाएगा। जैसे अविवाहिता ज्योति आज के युग का उदाहरण है, अनेक बॉयफ्रेंड के साथ फ्री घूमती है लेकिन विवाहिता सुरक्षित है। वैसे एक प्रमाणिक गुरु के निर्देश में भजन करता है, वो भटकता नहीं है, संत के भ्रम में पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। इसलिए वैष्णव गुरु के शरण में रहना चाहिए, बस सुरक्षित मार्ग है। वह दीक्षा का महत्व है। शिक्षा किसी भी परंपरागत आचार्य से लिया जा सकता है, ये भागवती परंपरा है। बस जितने भगवान के समर्पित आचार्य हैं वो सब शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए जरूरत है केवल एक गुरु की नहीं, अगर एक ही गुरु की जरूरत होती तो मूर्खतापूर्ण मंगलाचरण में नहीं कहा गया वंदे हम श्री गुरु हो, परफेक्ट हो गया ना, गुरुन वैष्णवांश्च, फिर गुरुओं की जरूरत क्या पड़ गई, एक गुरु को प्रणाम करके चुप रहो, कहते इसे नहीं काम चलता है। गुरुन वैष्णवान, जितने वैष्णव है भगवान के समर्पित सब गुरु हैं, वो बड़े छोटे सीनियर सीनियर जूनियर की कोई चर्चा नहीं है। जितने वैष्णव भगवान के शरण में सब पूज्य हैं, आदरणीय हैं, गुरु हैं, और उनसे शिक्षा मिलती है। ऐसा नहीं कि जो सीनियर है उसी से मिलता, जूनियर से भी मिलता है, जूनियर से भी शिक्षा मिलती है और वो प्रणम्य है, आदरणीय है। तो इनके शरण में अनन्य भाव से, उनको पूज्य भाव से उनकी शिक्षा लेनी चाहिए और उनसे भजन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। यह है ध्रुव महाराज के लिए बैकुंठ से विमान आया था, जानते हैं अंतिम में भगवत पार्षद कहे चलिए बैकुंठ चलिए, रुको, स्नान किए और वहां जितने वैष्णव भजन कर रहे थे सबसे प्रणाम। अब उनकी जरूरत क्या है, बैकुंठ का विमान आया तो अहंकार में जाते हैं, किसी को देखना क्या है। लेकिन यह है वैष्णवता, सारे महात्माओं से सब तमाशा देख रहे हैं, सबको जा करके ऋषियों से आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, देख रहे हैं कि विमान आया है, भगवत पार्षद आए हैं लेकर जा रहे हैं, फिर भी उनको वैष्णव के आशीर्वाद की जरूरत है। किसी भी स्तर पर कोई व्यक्ति पहुंच जाए लेकिन उनको वैष्णव की शक्ति की अपेक्षा है। और वैष्णव इतने महत्वपूर्ण हैं, बिजली की तरह हीटर और फ्रिज दोनों चलाते हैं। अगर उनकी कृपा हो गई, विशेष कृपा दृष्टि, तो असुर पत्नी कयाधु के गर्भ में आया हुआ असुर बालक भगवत पार्षद हो सकता है। असुर बालक भगवत रत्नाकर जैसा डाकू आदि कवि हो सकता है, मृगारी जैसा व्यक्ति भगवत पार्षद हो सकता है, भगवान का भजन कर सकता है। कोप भाजन हो गया तो भगवत पार्षद जय विजय असुर जोनी में जा सकते हैं। अगर वो दुखी हो गया कोई वैष्णव, तो ये अहंकार छोड़ दीजिए कि 20 साल 30 साल से भजन कर रहे हैं, बैकुंठ में रहने वाला परिकर भी नीचे आ सकता है। सनकादिक के कोप भाजन होकर रिकॉर्ड टूट गया, जदगत्वान निवर्तन थे तद धाम परम, वो सिद्धांत फेल कर गया। वैष्णव के सामने भगवान का सिद्धांत भी फेल हो जाता है। इतना बहस बांध रहे हैं गीता में कि मेरे धाम में आने के बाद कोई लौटता नहीं, लेकिन भागवत साक्षी है कि लौटना पड़ा है। तो इसलिए ऐसे उपयोगी वैष्णव का शरण लेना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। अगर उनके प्रति मर्त बुद्धि दोष बुद्धि किए तो गड़बड़ हो जाएगा, डंडा लगाने पर रोकने पर तो गिरना पड़ा। इसलिए भगवत भक्तों का बहुत महिमा है, वो गुरु है, उनके उपदेश को स्वीकार करके विनम्र भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। अविद्यमानो प्रभवाति ही द्वयो धातुर धिया स्वप्न मनोरथ जथा तत्कर्म संकल्प विकल्प कम मनो बुधो निरुंध्याद अभयम ततः स्यात्। तो इस प्रकार जिस प्रकार स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है और स्वप्न के समय उसके मन में विविध प्रकार के दृश्य आते हैं, वहां कोई न दृष्टा है न दृश्य है, केवल मन ही विविध प्रकार के बन जाता है। कभी मन वहां कोई आदमी नहीं है, कोई वस्तु, जो आदमी स्वप्न देख रहा है वो बेड पर सोया है, लेकिन मन भागता है और एक सांप बनकर पीछा कर रहा है। मन ही विविध प्रकार के वस्तु नहीं होने पर भी विविध प्रकार का कल्पना कर लेता है, और उसमें वस्तुतः न होने पर भी कुछ नहीं है, न वहां भय की स्थिति है न खुशी का स्थिति है, कुछ नहीं, फिर भी वो भयभीत होता है और उस भेद भावना का भान होता है। इसलिए संसारी कर्मों के संबंध में ज्ञानवान पुरुष संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक देते हैं। ये विविध प्रकार की जो योजना बनाता है जगे अवस्था में, सोए अवस्था में, बेचारा शरीर बेड पर पड़ा है लेकिन वो अभी भी शांत नहीं है, वो विविध प्रकार के योजना बनाकर कहीं बारात कर रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है, और उसमें जीव परेशान है। ऐसा करते हुए उसे अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। मन के इस कुराफात को रोकना बहुत जरूरी है। यद्यपि एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जीव कृष्ण से विमुख, जीव के कृष्ण से विमुख होने का क्या कारण है, क्यों दुखी है, तो इसमें बेचारी माया का क्या दोष है। विमुखता के कारण अस्मृति विपर्जय आदि होता है, तो वास्तव में विषय वस्तु कोई वस्तु नहीं है या स्वप्न दृष्टा की तरह है। स्वप्नकालिक कल्पनाओं की भांति केवल भ्रम मात्र है। मन ही इसमें सुख बुद्धि मनोविलास करके जीव को परेशान करता है। इसलिए मन को वश में करके भगवान में लगाने से अभय पद प्राप्त हो जाएगा। इतना आसान है मन वश में होगा। अर्जुन कहते हैं कहो तो पूरब से बहने वाली हवा को रोक दूं। वायु रिवर्स दुष्कर्म, हवा के बेग को रोक सकता हूं, तुरंत पूर्वैया से पछिया बहा दूंगा अपने बाणों से, लेकिन मन को रोकना इतना आसान नहीं है। ननु विषय विक्षिप्त चित्तस्य कुतो अभ्यभिचारिणा भक्ति संभवती, कुतः कुतस्तत आरम अभयम तत्र न तावत विषयो नाम वास्तव अस्ति किंतु मनोविलास मात्रम अतो मनो नियमनेन भजनाद अभयम स्याद इत्याह अविद्यमानोपिति। श्रीधर स्वामी कहते हैं इस मन को रोकना पड़ेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है मन को रोकना। मन को रोकना बहुत जरूरी है। मन के कारण ही विषय भोग में जीव पड़ जाता है, विविध प्रकार की योजना बनाता है, ये करना है वो करना है, यहाँ चलो वहां चलो, बेचैन रहता है। तो कहते हैं इसको मानो निमि महाराज सुनकर कहे कि अब आप ऐसा साधन बताने लगे कि ये तत् सर्वथा अशक्यम, यह बहुत असंभव है, मन को रोकना कठिन काम है, संभव नहीं है। तब ये तत् अत्यंत अशक्यम इत्याह संकया सुगम मार्गम आह। तब मन को रोकना कठिन है, तब कवि जी सुगम मार्ग बता रहे हैं। क्या शिणमन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। थोड़ा तो विलंब होगा लेकिन पूरा करूंगा, अभी दो तीन श्लोक और है, ज्यादा नहीं है। कहते हैं कि छोड़ो मन को कंट्रोल करने की बात, आसान मार्ग सुनो। श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। कहते हैं एकदम आसान मार्ग आपको बताता हूं। अर्जुन भी एकदम घबरा गए। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलव दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिवश दुष्करम। यह मन चंचल है, यह नहीं रुक सकता। ठीक है छोड़ो, मन कुछ भी करे, क्षीण मन सुनता रहे, क्षीण मन कंटिन्यूअस सुनता रहे निरंतर सर्वथा बराबर सुनने में मन को लगाए, कान को लगाए। सुभद्राणी समस्त आपदाओं को नाश करने वाले पूर्ण मंगलकारी भगवान के नाम को सुने, उनके गान को, उनके कीर्ति को गायन। श्रीमन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान के दिव्य नाम को गावे, सुने, उनके जन्म और कर्म के रहस्य को गावे सुने। तो उनके जन्म के कर्म के रहस्य तो बहुत है, कहां कहां सुने। प्रायण कहते हैं कि प्रायण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। भगवान के नाम को, लीलाओं को गावे, गायन करता रहे, उसमें बड़े बड़े कवि लोग रमते हैं। तो कहते हैं भगवान के जन्म कर्म के वर्णन की योग्यता तो हम में नहीं है। बहुत से भगवान के जन्म कर्म है, किसको किसको गावे, किसको छोड़े। बहुत से भगवान के अवतार है ना, किस अवतार को गावे। वो बलि महाराज के यहाँ बामन बनकर आए उसको गावे, कि मत्स्य अवतार लेकर सत्यव्रत महाराज के साथ नौका विहार किए उसको गावे, कि कुर्माकार में होकर समुद्र मंथन में भाग लिए उसको गावे, किसको गावे। विविध प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, परशुराम रूप में, किसको गाना चाहिए। कहते हैं छोड़ो, शास्त्र में क्या लिखा है उसकी बात इतना चक्कर में मत पढ़ो। कौन कौन जो लोक में प्रसिद्ध है उसको गाओ। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, जो लोक में जो कथा प्रसिद्ध है, जो जन्म लेने के बाद जो माता पिता भाई बंधु परिवार से जो सुनते आए हो उसी को गाओ ना। ज्यादा टेंशन लेने का क्या जरूरत है। अब कहाँ कहाँ पोथा पोथी पढ़ते जाओगे। जो लोक में प्रसिद्ध है उसी को गाओ। तदर्थ कानी, उन्हीं को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राम नृसिंह बराह के जन्म कर्म आदि का वर्णन है उसको गाओ। अच्छा, गाने की योग्यता क्या है। गायन बिलज्जो बिछरेद संग, लाज छोड़कर गाना है भाई। अब गाने में मत संकोच करो, संकोच मत करो, लाज लज्जा छोड़ो, गाओ। ऐसा मत सोचो कि पता नहीं ये लोग कैसा समझेंगे, तुम तो गाओ। प्रभुपाद ऐसे जगह पर जाकर गाए कीर्तन जहां टोटल भोगी लोग थे, हिप्पी लोग थे, नशा में चूर थे, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, व्यभिचार में रत, उन लोगों के तरह पागल जैसे कीर्तन गा रहे हैं, किसी का परवाह न करते हुए। लोग तमाशा देखते थे, क्या कर रहा है बूढ़ा। कुछ लोग हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन लज्जा छोड़कर, संकोच छोड़कर गाए और उस कीर्तन का प्रभाव हुआ कि हिप्पी को हैप्पी बना दिए, हैप्पी बना दिए, उन लोग भी सुनने लगे। तो यह है योग्यता। गायन बिलज्जो बिछरेद संग, संसार में भगवान के जन्म और कर्म की मंगलमयी गाथाएं प्रसिद्ध है बहुत, उसको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत सारे प्रसिद्ध नाम है, लज्जा संकोच छोड़कर उसको गाते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और स्थान में आसक्ति न रखकर असंग भाव से विचरण करना चाहिए। यह है योग्यता। और भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान के नाम को गाता है लज्जा छोड़कर, तो वह सारे जगत को पवित्र करने की क्षमता रखता है। वाग गदगदा द्रवतेजस्य चितम रुदत्य भीष्णम हस्ति क्वचित बिलज्ज उद्गायते नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जब लज्जा छोड़कर कभी थिरकता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, तो वह व्यक्ति सारे जगत को पवित्र कर देता है। इस प्रकार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रथांग पाड़े, जिनके हाथ में रथ का पहिया है या जिनके हाथ में चक्र है, ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए जो सदा सावधान रहते हैं, ऐसे भगवान, भगवान के हाथ में रथ का अंग है माने चक्र पहिया, तब भगवान विष्णु और कृष्ण के हाथ में चक्र रहता है, इसलिए उनको चक्री भी कहते हैं, कृष्ण को चक्री। तो सचमुच महाभारत युद्ध में भगवान रथ का पहिया लेकर गए थे, तो रथांग पाणि तो नाम पढ़ ही गया ना, तो इसको स्मरण करना चाहिए इन लीलाओं को। भगवान के विविध जन्म हैं, अवतार हैं, उसको गाना चाहिए। और यह भगवान की लीला कथा न्यूज पेपर की तरह बासी नहीं होता, ध्यान दीजिए। अखबार पढ़ने वाले जो खूब शौकीन लोग हैं पूछते हैं कब का पेपर है, कहते हैं कल का, आज का नहीं है, पढ़ लो, क्या हो गया, बासी हो गया, अब उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यह श्रीमद् भागवतम अनादि काल से अनंत काल तक न्यूज बना रहता है, यह है असली न्यूज। इसमें परम यशस्वी कृष्ण की गाथा है, ये बासी नहीं होता। मुझे याद है 1980 में जब भारत ने, जब जनता पार्टी के विरोध में फिर से इंदिरा का मांग होने लगा, तो मोटे मोटे अक्षरों में दीवार पर लिखा रहता था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। कहां गया नाम, सूरज चांद तो ज्यों का त्यों है, कहीं चर्चा नहीं है इंदिरा का, ये सब झूठी बात मूर्खों की नारा। लेकिन कृष्ण का जस अनादि काल से अनंत काल तक गाया जाएगा, यह परम यशस्वी भगवान की लीला है। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुरजना। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इस रहस्य को जो व्यक्ति जान जाता है और जानकर गाने लगता है, तो उसे फिर संसार में आने की जरूरत नहीं, मेरे धाम में आता है। तो इस प्रकार यह है, इसीलिए प्रभुपाद कहते थे प्लीज चांट एंड बी हैप्पी, गाओ भगवान का नाम, हरे कृष्ण गाओ, प्लीज चांट हरे कृष्ण गाओ, और इसके बाद प्रसन्न हो जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जो व्यक्ति इसको गाता है बड़े आसानी से संसार के दुख को पार कर जाता है। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, कहीं सुनही अनुमोदन करही भव बारिधि गोपद इवतरही। गोपद गाय का खुर, बरसात के दिनों में गाय चलती है तो जमीन में धस जाता है उसका पैर और छोटा सा गड्ढा बन जाता है, पानी से भर जाता है, फिर बरसात के पानी से भर जाता है, वो छोटा छोटा समुद्र है, वो गोपद हो जाता है भव समुद्र। जो व्यक्ति भगवान, कितने हमारे पैरों से वो गोपद पार होता है, गाय के पैरों से बना हुआ गड्ढा, पता भी हमको नहीं चलता है, वैसे यह भव समुद्र हो जाता है। कहीं सुनही अनुमोदन करही, जो व्यक्ति गाता है सुनता है अनुमोदन करता है, तो भव वारिधि ये भव समुद्र गोपदैव तरही। गोपदैव तरही की बात तो छोड़िए, उससे भी बढ़कर कहे हैं कि राम भालू कर्पी कटुक बटोरा। भगवान राम बंदर भालू की सेना बटोरे और सेतु हेतु श्रमकीन न थोरा। समुद्र पर पुल बांधने के लिए रामेश्वर पर थोड़ा परिश्रम नहीं किए, बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहूं विचार सुजन मन माही। कहते हैं कि लेकिन उनको भगवान को भी पुल बनाना पड़ा तब लंका गए, लेकिन उनका नाम उच्चारण करने से भव समुद्र सूख जाता है, पुल की जरूरत ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहूं विचार सुजन मन माही। आपको छोड़ दिया, विचार करो कि राम बड़े हैं कि उनका नाम। राम को पुल बनाने में परिश्रम लगाना पड़ा, लेकिन उनका नाम भव समुद्र को सुखवा देता है, पुल की जरूरत ही नहीं। इस प्रकार भगवान के दिव्य नाम है, इसको गाना चाहिए। और जो व्यक्ति नियम लेकर 16 माला जप करता है उसकी स्थिति क्या होती है, धीरे धीरे जप करते करते, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो दुतचित उच्चैः हसत यति रो दिति रो निगायन उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। यह श्लोक एवं व्रत, यह व्रत लेकर या संकल्प लेकर कि विशुद्ध व्रत धारण करता है, उसके हृदय में अपने प्रियतम प्रभु का नाम में अनुराग होता है, प्रेमांकुर उत्पन्न हो जाता है, उसका चित द्रवित हो जाता है और वह साधारण लोगों से ऊपर उठ जाता है, नाम जपते जपते लोगों की मान्यताओं से ऊपर उठकर कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी ऊंचे स्वर से हरी हरी कृष्ण गोविंद कहने लगता है, कभी मधुर स्वर से उनके गुणगान करता है, कभी अपने प्रियतम को रिझाने के लिए नाचने लगता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु से काशी में पूछे प्रकाशानंद जी कि आप सन्यासी होकर वेदांत क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं वेदांत पढ़ते हो, क्यों भावुकों की तरह नाचते गाते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज हमको मूर्ख देखकर कहे कि तुम ही मूर्ख, तुम्हारा ना ही वेदांत अधिकार, कृष्ण नाम जपो सदा यही मंत्र सार। यह हमको सिखा दिए कि कृष्ण नाम जपो बेटा, तुमको वेदांत में अधिकार नहीं है, इसलिए मैं नाम जपने लगा। एक श्लोक सिखा दिए शास्त्र का, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन गुरु महाराज के कहने से एक श्लोक रट लिया, भगवान हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल, इसके अलावा और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। तो प्रकाशानंद तो इस शास्त्र का वाक्य है, बृहद नारदीय पुराण का, ठीक कह रहा है, कोई उपाय नहीं है। तो कहे अच्छा ठीक है, नाम तो ठीक है, लेकिन नाचते फानते कूदते क्यों हो, भावुकों की तरह नाम जपो, हरे कृष्ण धीरे धीरे कहीं बैठकर तो नाचते कूदते फानते हो। तो कहे ये तो मेरी भी समस्या थी, मैं भी गया गुरु महाराज के पास कंप्लेन लेकर, खिवा मंत्र दिला गोसाई खिवा तार बल जपिते जपिते मंत्र करी ला पागल, ऐसा मंत्र दे दिए, मैं कंप्लेन लेकर गया था। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरी भी समस्या है, जो आप कह रहे हैं ना वो है, जपते जपते स्थिति बिगड़ गई, तो मैं कंप्लेन लेकर गया कि गुरु महाराज क्या मंत्र दिया, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बोल जपते जपते मंत्र करीला पागल, ये नाच रहा हूं कूद रहा हूं, ये क्या हो गया। तब गुरु जी कहे बेटा यही तो इस नाम का प्रभाव है, यही असली फल है। एक श्लोक और सिखा दिए, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या, इसी श्लोक को बोले हैं महाप्रभु, एवं व्रतस्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो दित चित्त उच्चैः हसत यति रो दिति रो हसत यति रो दिति रो तिगायन उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। बेटा बस बस फल मिल गया, यही तो नाम का फल है, इन नाम ही नचाता है गवाता है, पता भी नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरह से वो स्थिति आ जाती है नाम जपते जपते, और वह व्यक्ति इतना विनम्र हो जाता है, उतान होकर नहीं चलता, झुक जाता है, जहां भी देखता है जगत के व्यवहार सृष्टि को, भगवत सृष्टि का विस्तार जानकर सबको प्रणाम करता है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषीम सत्वानि दिशो द्रुमादिन शरीर समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनन्य। कहते हैं आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं नदी वनस्पति समुद्र आदि जो कुछ प्राणी मात्र ये हमारे प्रभु के शरीर हैं, यह समझकर सबको नमस्कार करता है अनन्य भाव से। समुद्र को देखकर दंडवत करता है, हिमालय को देखकर दंडवत करता है, वृक्षों को जंगल को देखकर दंडवत करता है, सब जगह वो प्रणमेद अनन्य, वो अनन्य भाव से भगवान का ही शरीर है ऐसा समझकर उसके अंदर प्रणाम करने की भावना आ जाती। जाता अनुराग की स्थिति में क्या होता है, यह प्रणमेद मतलब विधि लिंग में है, वो प्रणाम करे, करना ही चाहिए, जो ये स्थिति में आ जाता है प्रणाम करता है। सत्वानि भूतानि सभी प्राणियों को, आकाश आदि यत्किंच भूत मात्रम हरे शरीरम इति मत्वा प्रमेद। यह भगवान के शरीर है जो विशाल विराट पुरुष की कल्पना किया गया है, तो उनमें नदी पर्वत पहाड़ सब कोई कल्पना है, ये सब भगवान के शरीर है। ये पंचभूत आदि भगवान से निकले हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ज्योतिषिम ये ग्रह नक्षत्र तारे अद्भुत ये सबको। सत्वानी का मतलब जीव समूह, दिशो द्रुमानी सारे दिशाएं वृक्ष आदि सबको, शरीर समुद्रांश ये सरोवर समुद्र आदि सबको भगवान का शरीर मानकर प्रणाम करता है, यह स्थिति हो जाती है। और इस भक्ति का प्रभाव क्या है, क्षमा कीजिए थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन बस अब दो श्लोक है लास्ट। कह रहे हैं कि भक्ति एक साथ तीन काम करती है, बहुत अलग से कुछ नहीं करना है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल प्रपद्यमान से यथाश स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायो अनुघासम। ये भक्ति एक ऐसी साधन है कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति खूब भूख लगा है, उपवास किया है, तो क्या स्थिति होती है, क्षुधा बाधित करती है, एकदम भूख लगा है, पेट में कुछ चाहिए कुछ चाहिए, और उस स्थिति में शरीर में शिथिलता आ जाती है, कमजोरी महसूस होता है। और उस पोजीशन में अगर भोजन मिल गया तो तीन काम एक साथ होता है, जो भोजन सामने आता है उसमें स्वाद मिलता है पहला काम, जब खाए नहीं है तो जो भी मिलता है भूखे अवस्था में वो स्वादिष्ट लगता है, और जब भोजन किए हैं तो कितना ही स्वादिष्ट मिलता है ना, खाने की इच्छा ही नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं मिलता, एक से एक स्वादिष्ट पदार्थ भी नहीं खा पाता है। अब भूखे अवस्था में भोजन में टेस्ट मिलता है पहला काम, और जब एक एक ग्रास खाते हैं तो शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है, जो भूखेपन से कमजोरी, हाथ में टिड़ी पैर में कमजोरी, आंख से भी धुंधलावन दिखाई देता है निर्जला करने पर, तो सब एक एक कौर में ही सारी शक्ति मिलने लगती है, शक्ति आ जाती है शरीर में। और क्षुधा निवृत्ति, जो क्षुधा बाधित कर रही है वो भी शांत होने लगती है, क्षुधा शांत होती है, भूख मिटने लगता है, शरीर में शक्ति आने लगती है, भोजन में टेस्ट मिलता है, तीन काम एक साथ। वैसे ही जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो तीन काम, भक्ति करता है, ज्ञान होता है और वैराग्य, तीन काम एक साथ। अभी आप लोग जो कर रहे हैं बैठकर, ये क्या है, श्रवणम भक्ति। तो जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में सुख की अनुभूति होती है, सुनते हैं भगवान के विषय में, तो तीन काम एक साथ, सुनते सुनते ज्ञान होता है, अरे यार मैं कहां फंसा था, देखो मैं बदमाशों के साथ कभी फिल्म देखने, कभी शराब पीने, कभी मांस खाने, कभी होटल में, कभी क्लब में, कहां कहां जाता था, मेरा जीवन बदल गया। अभी मैं नेपाल में कथा किया जून में, 1 से 8 जून तक 7 जून तक, तो बगल में यूनिवर्सिटी था वहां का सबसे बड़ा, उसी एकदम उसी के निकट कथा हो रही थी, तो आते थे बच्चे स्टूडेंट भी। तो अंतिम दिन एक लड़की आई, सब प्रणाम करने आए, कहे स्वामी जी आप तो मेरा जीवन ही चेंज कर दिए। मैं तीसरे दिन से आना प्रारंभ की, लेकिन फिर सारा काम छोड़कर मैं आपकी कथा अटेंड की, लेकिन मेरा लाइफ ही चेंज हो गया है। किस रूप में चेंज हुआ है नहीं मैं पूछा, लेकिन उसकी बात मैं सुना रहा हूँ, मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया, मैं नया अनुभव